कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जैसे नंद महाराज को उन्होंने ना डेकोरेट किया, हमने बहुत छोटा बताया ना उसमें, उनको चांदी के जूता दिए, उनको मखमली फेटा पहनाया और सिल्क का कुर्ता पहनाया, धोती पहनाई, गले में रत्नों की माला पहनाई, ऐसा बहुत उनका श्रृंगार किया। उन्होंने तिलक लगाया चंदन का, उनके शरीर पे बहुत सुगंधी द्रव्य लगाए, और ये सब करने के बाद में एक मटका लाया दही और दूध का और सर पे इत्ता कर दिया। ऐसा है। सो बहुत सारी सुंदर सुंदर घटनाएं हुई है उसके अंदर। एक और चीज रह गई, वो ये है कि दही और हल्दी का मिश्रण बनाकर वो सब लोग को गाल मल रहे थे। एवरीबडी वॉज डूइंग दैट। जब आए तभी सब लोग जो आ रहे थे नंद भवन में, तो फिर वो ऐसे गोले फेंक रहे थे मक्खन के, नवनीत के। और जब एक साथ आए तो पहले उन्होंने दूध और दही फेंकना शुरू किया, फिर मक्खन के गोले फेंकना शुरू किया, फिर वो मिश्रण लिया और उसको सबको गालों में मलना शुरू किया। फिर उन्होंने एक सुंदर बात की, उसका नाम है घृतांबू। घृतांबू, घृत का मतलब क्या होता है? घी। घृतांबू नाम का एक द्रव्य उन्होंने बनाया। कैसे बनाया? इक्वल क्वांटिटी ऑफ घी एंड हॉट वाटर, दोनों को एक साथ उबाल के उसको कहते हैं ओटाना। ओटाना यानी एक गो ऑन बॉइलिंग बॉइलिंग बॉइलिंग, तो फिर वो एक समय पर वो घी और पानी एक रूप ऑलमोस्ट होता है। ऑफकोर्स एकदम एक रूप नहीं होता है, दे आर इमिसिबल। फिर भी जो बहुत बार अगर उसको गर्म करते रहेंगे तो ऑलमोस्ट दूध भी अगर घी के साथ करेंगे तो एक साथ कभी कभी वो मिल जाता है उसमें अधिकतर। तो वो उटाने के बाद, उटाना मतलब बॉइलिंग, घी और पानी, फिर उसमें कस्तूरी, फिर उसमें हल्दी, फिर उसमें केसर, ये डालने के बाद पक्का येलो रंग का लिक्विड बनेगा, वो ऊपर से स्टिकी बनेगा। फिर उसको पिचकारी में डाल के सब पर चलाते हैं, तब वो चलाते हैं उधर रंग इतना फिट होता है कभी निकलता ही नहीं है वो रंग। तो सभी ग्वाल बालों ने घृतांबू लाया था साथ में और उसके सबके ऊपर पिचकारी चलाई उन्होंने। ऐसा सुंदर नंदोत्सव हुआ। कहते हैं नंदगांव में जो आनंद है वो नंदगांव के लोग कहते हैं और कहीं नहीं है, क्योंकि नंदगांव में श्री कृष्ण भगवान के कौन से रस की लीला है? वात्सल्य, बराबर है। नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, बड़ी गोपियां हैं, बड़े गोप हैं, और कौन सी लीला है? प्रधान कौन सी लीला है? प्रधान लीला साक्ष्य लीला है, फ्रेंडशिप। हाँ, तो ऐसे कहते हैं जो नंदगांव में साधु जाते हैं भजन करने के लिए, हाँ, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, जो भी नंदगांव में जब वो टिकते हैं तो ही उनको पक्का माना जाता है, क्योंकि नंदगांव में आज भी जो बच्चे हैं और जो युवा अवस्था में लड़के हैं वो आज भी बहुत उदम करते हैं और आने वाले लोगों को बहुत यू नो ताने देते हैं, उनको बहुत उनका मजाक उड़ाते हैं, और वो वहाँ परमानेंट रहते हैं तो उनको दिन रात तंग कर रहते हैं। तो उनका आतंक जो सह के भी भजन कर सकता है उसको सिद्ध बना जाता है। क्योंकि वो जो कृष्ण भगवान बलराम जी और सखाओं का जो नटखट भाव है वो आज भी उन बालकों के अंदर दिखाई पड़ता है। और वैसे हमारे बरसाना में जो हम लोग आई कैंप लगाते हैं ना, 92 से लगा रहे हैं, तो तभी से हम लोग इन बालकों के संपर्क में हैं, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो बालक हैं 15 साल से बड़े हैं वो हमारे कैंप में सेवा करने आते हैं और बहुत शरारती है, बहुत नटखट और बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं, कोई कपटी नहीं उसके अंदर। धाम का यही महत्व है। धाम जो है ना उसमें धाम स्वयं बलराम जी है, स्वयं बलराम जी शांतरस में भगवान का धाम बनते हैं। यहाँ तक कि गौलोक धाम जो है, जब भगवान ने सबसे पहले दो व्यक्तियों को निर्माण किया, एक बलराम जी और एक राजा रानी, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ये, तो तुरंत लीला अवतार प्रथम अवतार बलराम जी ने अपने आप को धाम में विस्तारित किया। तो गौलोक धाम जो है वो बलराम जी का विस्तार है। फिर गौलोक धाम में भी जो भगवान की वस्तुएं हैं, एक तो निजी वस्तुएं जैसे कि पीताम्बर है, मुरली है, कंडल है, मोरपंख है, वो सब बलराम जी है, निजी वस्तु भी। फिर वो जो उपयोग में लाते हैं जैसे कि आसन बैठने का है, बेड है, पलंग है, या और सारी घर की जो वस्तुएं हैं, सब कुछ बलराम जी है, एवरीथिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो धाम जो है वो एक तो बलराम जी है, और बलराम के रूप में स्वयं कृष्ण भी हैं, क्योंकि बलराम जी भी स्वयं कृष्ण हैं। तो गौलोक धाम का भाव क्या है कि गौलोक धाम में एक विशेष बात है, इसमें कृष्ण को कृष्ण के रूप में कोई जानता नहीं है, अर्थात भगवान के रूप में कोई जानता नहीं है। गौलोक एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत जिसमें जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो सब जगह ईश्वर भाव है। ब्रह्म ज्योति में तो भगवान की ज्योति है, वो उसमें अनंत वैकुंठ जो है वो तैर रहे हैं, और हर एक वैकुंठ में एक विष्णु है जो डिफरेंट है बाकी सब विष्णुओं से, और अनंत प्रकार के विविध विष्णु हैं। अनंत अनंत यानी चार हाथ है ना उनके, तो चार चीज होती है ना, शंख चक्र पद्म गदा। अब यह पिछले वाले हाथ में शंख कांस्टेंट रखो और इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दो, कितने सारे बन जाएंगे। फिर आप सामने वाले में शंख कांस्टेंट रखो, फिर बाकी घुमाओ, कितने विष्णु बन जाएंगे। फिर राइट साइड में शंख रखो, फिर पिछले हाथ में शंख, ये शंख के ही चार हिस्से हो, चार हो गए। अभी ऐसे ही कमल का होगा, गदा का होगा, चक्र का होगा, तो एक एक में रखेंगे तो कितने सारे विष्णु हो जाएंगे। इसके अंदर एक एक कॉम्बिनेशन डिफरेंट डिफरेंट है, किसी में राइट फ्रंट में चक्र है, किसी में लेफ्ट फ्रंट में चक्र है, किसी में, तो इतने सारे विष्णु जो हैं वो एक एक वैकुंठ का आधिपत्य करते हैं। फिर उसके बाद में ये अनंत ब्रह्म ज्योति है, हमारे बुद्धि के हिसाब से समझना है तो 75% जो है क्रिएशन आध्यात्मिक है, उसमें अधिकतर हिस्सा जो है वो ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ का है, सब में वैकुंठ तैर रहे हैं, उसमें सब लोग भगवान की आराधना करते हैं ऐश्वर्य भाव में, ओम सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पाद, दिन भर स्तुति गान करते रहते हैं। फिर वो जो वैकुंठ है वो बहुत विशिष्ट बन जाते हैं, बहुत विशिष्ट, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे कि दूध है और कंडेंस मिल्क है, उसके बाद रबड़ी है, उसके बाद खुरचन है, तो वैसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे तो फिर पहला आता है द्वारका, वो भी वैकुंठ है लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक है, वहाँ पर विशिष्ट द्वारकाधीश भगवान निवास करते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो चार भुजा वाले हों, वो दो भुजा वाले हैं, बाकी सब विष्णु चार भुजा वाले हैं, लेकिन ये भी ऐश्वर्य भाव में है लेकिन दो भुजा वाले द्वारकाधीश हैं, और सब द्वारका की रानियाँ वो सब वहाँ निवास करती हैं भगवान के साथ। फिर आगे जाएंगे तो अयोध्या आएगा, वहाँ प्रभु रामचंद्र निवास करते हैं, फिर वहाँ सीता लक्ष्मण हनुमान वो सब जो जितने भी उनके पार्षद हैं वो सब वहाँ रहते हैं, और उसके आगे आता है मथुरा, यहाँ पर फिर वसुदेव देवकी देवकी नंदन कृष्णा उद्धव जी वो सारे सखा उनके वहाँ के सभी मित्र मंडली सात्यकी जो भी यादव वो सब मथुरा द्वारका में डिवाइडेड हैं। और उसके परे एक लोक है जिसको गौलोक कहते हैं, और उस गौलोक में श्री हरि कृष्ण गौलोकेश्वर रहते हैं, उसमें राधा रानी रहती हैं, सारी गोपियां रहते हैं, सारे ग्वाल बाल रहते हैं, गैया रहती हैं, सब मोर रहते हैं, जो भी यहाँ पर वृंदावन में वो सब वहाँ रहते हैं, और वहाँ पर कोई जानता नहीं है कि श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान है, सब उनको ऐसे जानते हैं, भाई बहन पुत्र सखा, एक्सेप्ट भगवान, बाकी सब रूप में है वो लेकिन भगवान रूप में नहीं है। और उसमें कहते हैं एक एक उसका एक डिवीजन है छोटा सा अंदर, वो है चैतन्य लोक, इसमें चैतन्य महाप्रभु विराजमान है, तो केवल प्रेम संकीर्तन चलते रहता है वहाँ पर कॉन्स्टेंटली। तो उनके भक्त हैं सब नित्यानंद प्रभु और अद्वैता आचार्य, वो जो जो अलग अलग रूप लेकर वहाँ पर लीला करते हैं वो सब वहाँ रहते हैं। और वो गौलोक धाम जो है वो पृथ्वी पर प्रकट होता है, आप सोचिए। तो इतना विशिष्ट है वो, इतना परम परम धाम है वो गौलोक। और उसमें उसमें जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी जब लीला करते हैं उसमें आकर, तो उसमें भी किसको एंट्री देते हैं? सबको वहाँ पर एंट्री नहीं है, जो हर व्यक्ति भगवान का भक्त है उसमें उसको एंट्री नहीं मिलती है। कैसा है ना, भगवान जो है ना वो भी क्रीड़ा करना चाहते हैं, वो अपने भक्तों के साथ खेलना चाहते हैं। और खेल किसके साथ करते हैं? जो इक्वल होते हैं। समझो मुझे खेलना है, समझो मुझे पतंग उड़ाना है, समझो अभी संक्रांति आ गई मुझे पतंग उड़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, कोई डॉक्टर लोगों को इंस्पायर करूँगा और हम लोग एक ग्रुप डॉक्टर को लेकर टेरेस पे जाएंगे और डॉक्टर से पतंग उड़ाएंगे, कोई फिरकी पकड़ेगा, कोई पतंग उड़ाएगा, कोई कुछ करेगा। और आम स्तर पर, साधारण स्तर पर भौतिक विश्व में ऐसा होता है, कोई भी डॉक्टर व्यक्ति चपरासी के साथ में पतंग नहीं उड़ाएगा, है ना। वो एक उनका डिग्निटी है, ईगो की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक मैचिंग नहीं होता है उसका, क्योंकि चपरासी ऐसे हाथ जोड़ के एकदम उसमें रहेगा, तो उनको कैसा है फ्रेंडशिप में पतंग उड़ाना है, हंसी मजाक करते हुए, हंस परियास करते हुए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर चपरासी देगा तो बोलेगा अरे सर कैसा बात कर रहे हैं, अरे ऐसे भी बात करते हैं ये लोग। लेकिन वो फ्रीडम चाहिए उनको, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाव समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मुझे बच्चा बनकर खेलना है तो मेरे साथ वाला कोई चाहिए, मैं सबके साथ बच्चा बनकर नहीं खेल सकता। और नॉनसेंस मुझे अगर बोलना है, कुछ कुछ भी बकना है मुझे, तो मुझे सबके साथ में नहीं बोल सकता मैं। तो भगवान को भी अगर लीला करनी है तो वो दास्य रस और ऐसे लोगों के साथ में नहीं कर सकते। उनको भी चोरी करना है तो भी बताओ, आप विष्णु चोरी कर सकते क्या? या आप जाकर विष्णु को गले में आ डाल के विष्णु चलो गोटी खेलते हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो रस ही अलग है, वो बॉस एंड दास का रस है। और भगवान को वो सब जगह पसंद नहीं आता है। कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है ना कि हमको फ्री होना चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो घर है ना जिसको हम ग्रह कहते हैं, हाँ हमारी गृहस्थी वहाँ बसी हुई है, ऐसे कहा गया है कि एक घर का ऐसा कि गुण होना चाहिए और होता है और होना चाहिए कि वहाँ पर आपको मिस्टेक करने के लिए अलाउंस है, उसी को घर कह सकते हैं, वेर यू कैन मेक मिस्टेक। ऑफिस में आप परफेक्ट रह सकते हो, सभी जगह आप जगह अपने अपने जगह पर, टेबल कुर्सी वो पेन सब जो लैपटॉप सब अपनी जगह पे होना चाहिए, सही इधर उधर फैला नहीं सकता। लेकिन वही व्यक्ति घर पे, उसको अलाउ होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए कि भाई ठीक है पैंट निकाल के फेंक दो किधर भी, क्योंकि वो घर है उसका। टू बी फ्री, टू बी यू विथ नो रेस्ट्रिक्शंस। तो भगवान को भी ऐसी स्पेस चाहिए। तो आपको समझ में आया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी अपनी स्पेस चाहिए। उनको अगर बचपन के भाव में चोरी करने का भाव आया तो भी चोरी करने वाले और समझने वाले लोग चाहिए उनको, ये पूछने वाले लोग नहीं चाहिए, क्या तुम कृष्ण हो चोरी करती हो, अरे तुम तो भगवान हो, तुमसे कितनी अपेक्षा है लोगों की, लोग इतना आपको ऊंचा देखते हैं और आप चोरी कर रहे हो, तो बोलेंगे ये आदमी सही नहीं है मेरे साथ यहाँ पर। इसलिए जो सिद्ध हो जाते हैं, हाँ दोज बिकम रियलाइज्ड, वो देखते हैं कि अभी ये मेरे लायक हो गए हैं, मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। लेकिन बाधा क्या है, वो अभी भी ऐश्वर्य भाव में है, वो अभी भी ओम सहस्र शीर्षा सहस्रपात वही कर रहे हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह वही कर रहे हैं, जब दिखे तभी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी उनके मन में वो नॉलेज है, वो रियलाइज है, पूरा प्रेम उनके मन में आया है, कोई रस में भी होंगे वो, लेकिन उनके मन में वो नॉलेज है कि ये परम भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण गोलोकेश्वर परम भगवान है। तो वही एक बाधा है, क्योंकि वो उनको गेंद खेलना चाहते हैं, वो श्लोक कह रहे हैं उनके लिए। यशोदा ने जब ही मुंह में देखा ब्रह्मांड तो क्या प्रॉब्लम हुआ उसको, लगा अरे तो भगवान है, जैसे ही भगवान है पता चला, अरे बाप रे, मैंने इसको कितना डांटा, कितना मैंने उसको डंडा दिखाया, क्या क्या किया उसके लिए मैंने, अरे ये तो भगवान निकला, बाप रे, तुरंत हाथ जोड़ के श्लोक चालू हो गए। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, वो ये सब सुनने के लिए थोड़ी यहाँ पर आए हैं, उधर बहुत है वैकुंठ में अनंत, कोई कमी नहीं उसकी, उसी को यहाँ पर रिपीट करेंगे तो यहाँ पर आनंद सब खत्म हो जाएगा। तो उन्हें मुंह बंद कर दिया, एक स्मित स्माइल दे दिया उनको। तो इतना योग माया का प्रभाव है, इतना माधुर्य प्रेम का गाढ़ापन है कि वो एक स्मित हास्य देखकर माता सब भूल गई। तो इतना ओवरवेलमिंग था, इतना भाव विभोर करने वाला था वो, आप सोच सकते हैं आपके बेटे के मुंह के अंदर पूरा वर्ल्ड दिखाई पड़ रहा है, तो क्या लगेगा आपको, बीमार हो गया क्या, क्या मैं भ्रम में हूँ, मुझे कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई, मेरे ब्रेन में कुछ ट्यूमर हो गया कि उसको कुछ बीमारी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भयंकर स्थिति से भी एक क्षण के अंदर वो सब भूल गई और तुरंत स्तन पे लगा के उस स्तनपान कराया उसको। तो वो क्या करते हैं, परास्त शक्तिर विविध ही वस्तु यते, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, उसमें से एक एक बहिरंगा शक्ति है, एक अंतरंगा शक्ति है, एक तटस्थ शक्ति है, और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा वो पूरे भौतिक और आध्यात्मिक सृजन निर्माण का संचालन करते हैं। उसमें एक शक्ति है, उसका नाम है जगन मोहिनी माया। जगन मोहिनी माया क्या करती है, जगन मोहिनी माया आपके दिमाग में से स्पेसिफिकली वो नॉलेज डिलीट कर देती है जो आपको बताता है कि ये भगवान है, वो भगवान है, और भगवान से संबंधित, भगवान अगर होंगे तो उनके संबंधित जो भी इनके गुण है और एक्टिविटीज है वो सब आपके मन से डिलीट कर देगा। और इसका प्रूफ है दशम स्कंद में कि जब कंस को मारकर श्री कृष्ण भगवान, पहले उन्होंने उग्रसेन को मुक्त किया, राजा है ना, पहले उनका एटिकेट जो है राजा को पहले मुक्त किया, फिर माता पिता के जेल में गए और माता पिता को मुक्त कर दिया, और माता पिता को जब मुक्त कर दिया तो तुरंत उनके चरणों में वंदन किया बलराम जी और कृष्ण भगवान ने। और अभी कृष्ण बलराम ओके, वीरता के भाव में उन्होंने कंस का, उसके भाइयों का सबका वध कर दिया, चाणूर मुष्टिक कूटचल तोशल सब योद्धाओं का वध कर दिया, फिर कंस के भाइयों का, आठ भाइयों का वध किया गया बलराम जी कृष्ण ने मिलकर, तो वीरता दिखाई ना, लेकिन है तो कृष्ण बलराम ना वो, और माता पिता को मिल रहे 11 साल 52 दिन के बाद, तो उनको अभी माता पिता के साथ माता पिता के और बालक के रूप में लीला करनी है, लेकिन इनके मन में यही भाव है कि मेरे बालक तो है लेकिन भगवान है, और इनको लग रहा है कि हम दंडवत कर रहे हैं तो उठाकर गले लगाना चाहिए, आलिंगन देना चाहिए, सिर चुमना चाहिए, गाल चुमना चाहिए, प्यार करना चाहिए, दुलारना चाहिए, इनकी इच्छा है, और वो अभी भी अटके हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि बालक तो है लेकिन भगवान है, तो वो आलिंगन नहीं दे रहे हैं। तो कृष्ण को, बलराम को अच्छा नहीं लगा, उसने तुरंत, दशम स्कंद में श्लोक है, तुरंत जगन माया, जगन मोहिनी माया का प्रभाव डाला उनके ऊपर तुरंत, और वो भूल गए कि ये बालक मेरे भगवान है, तुरंत उसको उठाया और गले लगाया, बहुत प्रेम से दुलारा जैसे बालक को माता पिता करते हैं। तो भगवान ना उसके खोज में रहते हैं हमेशा, क्योंकि इतने सारे सृजन निर्माण में वैकुंठ भाव वाले बहुत लोग हैं उनके पास, खचाखच भरे हुए हर वैकुंठ में भरे हुए, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उनके खेलने के योग्य हैं, सब लोग खेलने के योग्य नहीं है। अभी खेल कोई केवल सखाओं के बीच में नहीं होता है, सखियां भी खेलती हैं, वो होता है ना सारी पाठ, क्या कहते हैं उसको, चौसर ऐसा होता है ना, वो डालते हैं, आप गिनते हैं, उसके अंदर डालते हैं, फिर वो मार देते हैं, फिर वो जीत जाते हैं, फिर वो कुछ दांव पे लगाते हैं अपनी मुरली, कभी कंगन, कभी कुछ कंटाहार, कभी कुछ मोरपंख लगा देते हैं उसके अंदर। वो राधा कुंड के किनारे पाशा खेला घाट है, उधर सब सखियां बैठकर कृष्ण के साथ चौसर खेलती हैं, और सब जगह पर कृष्ण अपनी दादागिरी करते हैं, लेकिन पाशा खेला में राधा रानी को हरा देती है। तो वो गोपियों के साथ भी खेलते हैं, वो रास लीला करते हैं, और भी जल क्रीड़ा करते हैं, और भी झूला लीला करते हैं, कितनी प्रकार की लीला, वो तो सब खेल ही है ना, क्रीड़ा ही है वो। और ग्वाल वालों के साथ बाकी सब करते हैं जो सखाओं के साथ, किन खेलने के लिए आवश्यकता है क्वालिफिकेशन, तो दास्य के ऊपर वाले लोग जो है वो खेलने के योग्य होते हैं। तो सबके जिनके जितके लोगों को तय होता है कि इनको गोलोक के, गोलोक से आकर वृंदावन में जन्म देना है लीला में, उनके सबके पहले जगन मोहिनी माया से डिलीट किया जाता है, फिर वो वहां पर जन्म लेने के योग्य होते हैं। और फिर कोई सखा बनता है, कोई कौन बनता है, कोई कौन बनता है, कोई बड़ी गोपी बनी हुई है, कोई तुंगी बनी है, कोई प्रभावती बनी है, कोई और बनी है, ऐसा अपने लीला कर रहे हैं। तो ये भाव जो है कृष्ण को देखो, एक होता है माया जो हम सब लोग इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करना चाहते हैं, ओके। उसके बाद योग करते हैं, योग करके हम इंद्रियों को छोड़ देते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं, योग युज हाँ मिलना चाहते हैं उनसे, उसको योगी कहते हैं। और एक होता है भोगी, पहला वाला, दूसरा है योगी, और तीसरा है भक्त जो भगवान को रियलाइज करता है, यानी साक्षात्कार होता है भगवान का उसको। योगी फिर भी अभी तक जुड़ना चाहता है, लेकिन आत्मा केवल स्वार्थ है उसका, उसके अंदर। योगी और भक्त के अंदर अंदर क्या है, योगी जो है वो भगवान से कुछ चाहता है, जरूर भगवान से चाहता है, लेकिन भगवान से भी कुछ चाहता है, और भक्त केवल भगवान को देना चाहता है। तो योगी है, अच्छा है, बेटर देन एंजॉयिंग आउटसाइड, है ना। तो वो आत्मरमण करता है, अपने आत्मा में भगवान के साथ रमण करना चाहता है। लेकिन जब भगवान आपके साथ रमण करना चाहते हैं तो रासलीला निर्माण होती है। When परमात्मा wants to enjoy you, the Supreme Lord wants to enjoy you, in you or with you, तब वृंदावन धाम निर्माण होता है और रासलीला निर्माण होती है। तो हम सब लोगों को भक्ति का अंजाम, अंतिम स्थिति क्या होनी चाहिए कि भगवान को लगना चाहिए कि now I want to enjoy you, तब हमारी भक्ति परिपूर्ण हो गई। हमने भगवान को जान लिया, कुछ हासिल नहीं किया, क्योंकि जानना एक बात है और दूसरी बात है कि भगवान के साथ हमने प्रेम किया। कहते हैं प्रेम करना एक बात है और स्वयं प्रेम बन जाना दूसरी बात है। गोपियों की क्या विशेषता थी, वो प्रेम करती नहीं थी, वो स्वयं प्रेम थी, वो प्रेम स्वरूपा थी गोपियां। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान को कंफर्टेबल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे साथ उनकी इच्छा के अनुसार, उनके मूड के अनुसार जो गेम खेलना है, वो खेल खेलना है, वो खेल सकते हैं। उसके लिए योग योग बनना, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। द अल्टीमेट सिचुएशन इन भक्ति इज टू बी बिकम एलिजिबल और टू बिकम ऑन दैट स्टेज वेयर ही विल फाइंड योर सेल्फ सुटेबल दैट ही कैन प्ले विथ यू। जो भक्ति मार्ग है ना, वो इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि बाकी जितने सारे मार्ग है, राजयोग, ध्यान योग, हठ योग, सहज योग, जितने भी योग बताए गए, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब में भगवान से हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। कर्म योग में भगवान से हम कर्म का फल चाहते हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी में पुत्र चाहिए, किसी में धन चाहिए, किसी में समृद्धि चाहिए, कुछ पापी काम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए, भगवान से चाहिए। ज्ञान में क्या चाहिए, कुछ भी कर्म फल नहीं चाहिए, लेकिन सबसे मोक्ष चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, मुझे कर्म इसमें सबसे धर्म मृत्यु जरा व्याधि से मुझे मुक्त होना है। मैं बहुत अभी मेरा मुझे विरक्ति आ गई है, हमारी भाषा में बहुत पक गया हूँ मैं अभी, मुझे अभी निकलना है इससे बाहर, बहुत हो गया अभी, ये माता पिता, ये परिवार, पत्नी सब, हाँ ये धन, यौवन, पुत्र परिजन, इते की आते परती तीरे, बहुत हो गया अभी, मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो भगवान से मुक्ति चाहते हैं, है ना। लेकिन भक्ति एक ही मार्ग ऐसा है जिसमें हमारे हृदय के सिंहासन से हम उतरते हैं और भगवान को बिठाते हैं और हम नीचे बैठ जाते हैं। हमारे हृदय है वो, हमारा ही सिंहासन है। ठाकुर भक्तियों को कैसे कहते हैं कि वो हमारा ही घर है, मेरा ही नाम पे लीगली रजिस्टर है, लेकिन मैं आपको उसका स्वामी मानता हूं, मैं आपको अपने आप को आपका सेवक मानता हूं। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर, घर आपके नाम पे है, आपने खर्च करके उसको खरीदा है। तो ये जो है इसको भक्ति कहते हैं। जब तक हम अपनी जगह पर भगवान को नहीं बिठाते हैं, भक्ति का आरंभ नहीं होता है। और फिर आगे की बात है, भगवान जब आपके साथ खेलने का प्रयास करेंगे। तो ये ब्रज की विशेषता है। वहां पर मोर भी हो या कोई खरगोश भी हो या कोई हिरन भी हो या गाय हो, बैल हो या भैंसा हो, भैंस हो, सब है वृंदावन में, सब लोग हैं, हाथी है, घोड़े हैं, सब है वृंदावन में, पेड़ है शांतरस में, फिर कोई दास्य रस में सब छोटे सखा हैं, फिर फ्रेंडशिप वाले सखा हैं, फिर गोपियां हैं, उसमें बहुत कैटेगरीज हैं। वो सारे जो हैं वो ये नहीं जानते कि भगवान भगवान है। और सब लोग ब्रज में, रियल ब्रजवासी का व्याख्या क्या है, सब लोग उनको देना चाहते हैं, उनसे कोई कुछ अपेक्षा नहीं करता है। जैसे ग्वाल बाल उनको कहते हैं एक बार, अरे वो जो ताल वन है ना, ताल वन, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फल है, उनको बहुत खाने की इच्छा हो रही है। तो आप अभी मैंने कहा कि अरे वो तो कुछ इच्छा नहीं करते खुद के लिए, लेकिन आचार्य समझाते हैं कि अगर अगर आप कृष्ण बलराम को बताएंगे कि आप है ना वो खाइए, वो बहुत बहुत अच्छे फल है, बहुत मीठे मीठे फल है, मुझे हमको लगता है कि आपको वो खाना चाहिए, तो कृष्ण स्वयं के लिए कुछ सोचते ही नहीं। अगर आप मेरे लिए बोलेंगे कि आप लस्सी पियेंगे, आप भेल खाएंगे, आप पानीपुरी खाएंगे, तो मैं नहीं नहीं, लेकिन आप कहेंगे आपको खाना है, तो चलो चलो आपको, चलो लेट्स गो एंड हैव टुगेदर। तो होस्ट क्या सोचता है कि मेरे गेस्ट को क्या अच्छा लगे, वो सोचता है वो करूँ मैं। वैसे भगवान सदैव क्या सोचते हैं, मेरे भक्तों को क्या करना अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा। तो ये ग्वाल बाल जानते हैं कि अगर हम हमारा ही नाम बोलेंगे हमको खाना है तो वो चलेंगे, लेकिन उनको नहीं खाना है, उनको इच्छा है कि कृष्ण बलराम खाए उसको। तो ये पूरा स्क्रिप्ट बना रहे वो, क्या बहुत दिन से बहुत खुशबू आ रही है और हमें हमारा दिल ललचा रहा है, हमारा माउथ वाटरिंग हो रहा है, और ये जो धेनुका है वो कंस का आदमी है, उसने अपना एक कॉर्डन बना के रखा है, उसके अंदर कोई जा नहीं सकता है, वो खुद ही खाता है, जो जाता है उसको मारता है, उसके भय से कोई जा नहीं पाता है वहाँ पर, हमको कब से लग रहा है कि इसको खाएं, इसकी दूर दूर तक सुगंध फैल रही है ताड़ फलों फलों की। तो बलराम जी आप ले चलो ना हमको वहाँ पर, हमको खाने की इच्छा हो रही है। तो जो बलराम जी और कृष्ण क्या सोचते हैं, अरे मेरे ग्वाल सखाओं को ताड़ गोले खाने की इच्छा हो रही है, चलो चलते हैं। लेकिन उनके हृदय में क्या है, उन दोनों को खिलाना है, इनके हृदय में क्या है, इन सबको खिलाना है। दिस इज ब्रज, वृंदावन धाम यही है कि भक्त लोग भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान भक्तों को संतुष्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोनों कभी भी स्वयं की संतुष्टि की बात कभी भी नहीं करते। अगर हमें ब्रज का वातावरण निर्माण करना है तो हम जहां भी है, मंदिर में है, भक्त समुदाय में है, या हमारा सेंटर है, या हमारा टेम्पल है, या हमारा घर है जहाँ भक्त रहते हैं सब लोग, उसमें आपको यही मूड क्रिएट करना है कि आई एम हियर टू सर्व अदर्स एंड एवरीबडी इन द हाउस थिंक्स आई एम हियर टू सर्व अदर्स। बेटी सोच रही है मैं माँ बाप की सेविका हूँ, माँ बाप सोचते हैं मैं बेटी की सेविका हूँ, भाई सोचता है मैं भाई का सेवक हूँ, बहन सोचते हैं मैं भाई का सेवक हूँ सेविका हूँ, सब लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे की सेविका हूँ और सेवक हूँ, और मेरा लाइफ का गोल है कि उनको प्रसन्न करना है। ये मूड जब उत्पन्न होता है तो घर में भी ब्रज उत्पन्न होता है, और ये मूड जहाँ भी उत्पन्न होता है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, सऊदी अरेबिया में है, सब जगह पे वहीं ब्रज निर्माण होता है, क्योंकि ब्रज एक भाव की स्थिति है, ब्रज एक जियोलॉजिकल लोकेशन भी है, जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति भी है वो, लेकिन श्रेष्ठ स्तर पर एक भाव की स्थिति है। वो भाव जहाँ भी उत्पन्न होगा, न्यूयॉर्क में होगा या लास वेगास में होगा, वहाँ पर भी ब्रज है। वो बाहर की जो स्थिति है, जुए की स्थिति लास वेगास में है, वो उसको परिणाम नहीं करेगी। अगर वो स्थिति कि एक घर में भी वहां पर उत्पन्न हो गई तो ब्रज वहां उत्पन्न हो गया। और ये ब्रज जो है वो हमारा घर है, यहां पर गोवर्धन इको विलेज क्यों बनाया है, ताकि इस भाव को सब लोग कैप्चर करें। हाँ अच्छा है, इधर बहुत बढ़िया हरियाली है, बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगी फूल हैं, फल है, अद्भुत पक्षी दिखाई पड़ते हैं, उधर जाके गधा भी दिखाई पड़ेंगे, घोड़ा भी दिखाई पड़ेंगे, आगे भी सब कुछ दिखाई पड़ेगा, जमुना जी है, गोवर्धन है, बहुत सुंदर स्थिति है, वी कैन एंजॉय, नाइस प्रसाद इज देयर, गुड रूम्स आर देयर, एक एक्सटर्नल स्थिति है। आपका यहाँ पर आना वास्तविक रूप में तब सफल होगा जब आप ये प्रेम की भावना यहाँ पर अनुभव करेंगे। पहले आप अनुभव करेंगे भक्तों की तरफ से, फिर आप लगे आपको लगे कि अरे मैंने इतना प्रेम लिया, मुझे भी अभी कुछ प्रेम देना चाहिए, उनको आदान प्रदान होना चाहिए, और जब ये स्थिति होगी तब ये आपका यहाँ का आना सफल हो गया। चाहे भक्त हो ना हो, प्रेम तो सबको जरूरी है ना, प्रेम को किसको नहीं चाहिए, प्रेम सबको प्रेम चाहिए, सब प्रेम के लिए जी रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सबको प्रेम चाहिए, इसलिए वो टू लव एंड बी लव्ड, प्रेम करना और प्रेम अनुभव करना दूसरों का, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, बाकी सारी आवश्यकता उसके बाद सेकेंडरी है। तो ये भाव के लिए जो योग्य है वही ब्रज में जन्म लेते हैं। ब्रज की एक व्याख्या है कि जहां पर सब प्रेम करते हैं, प्रेम के अलावा वहां कुछ है ही नहीं, कोई ऐश्वर्य की भावना नहीं है कि आई लव कृष्णा बिकॉज ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, ऐसा नहीं है। नो केयर्स, नोबडी केयर्स, जैसे अभी एक कामे वन है वहाँ पर, कामे वन, हाँ वैसे ही तो 137 वन है, 137, उसमें से 108 उनको अधिक प्रिय हैं, उसमें 12 उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो उसमें नंबर 2 का फेवरेट है ना, वो कामे वन है, वृंदावन के बाद 12 में वृंदावन सबसे ज़्यादा फेवरेट है उनका। तो कामे वन में वो सख्य लीला भी करते हैं, माधुरी लीला भी करते हैं। तो एक जगह पर एक जगह है उधर, बाद में उसका नाम पड़ा जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो जाकर वो कृष्ण जाके ऐसा बोल रहे हैं, अरे पता है क्या आपको, गोपियों को बोल रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में राम था और दाऊ जी लक्ष्मण भैया थे। तो सखे हंसने लगी, पता है राम कौन होते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कभी चोरी नहीं करते हैं, उनकी एक ही पत्नी थी, मतलब वो एक वाक्य के अभी वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इस वाक्य में बहुत सारे वाक्य सम्मिलित हैं कि आप कितने झूठ बोलते हो। वो कभी भी चोरी नहीं करते, मतलब आप कितनी चोरी करते हो। एक एक वाक्य में सब छुपा हुआ है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप कितने मर्यादा छोड़कर काम करने वाले व्यक्ति हो, फिर भी वो बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको पता नहीं है, मैं राम हूँ, भैया दाऊ जी लक्ष्मण थे। तो फिर वो झिकझिक हो गए बहुत, वो ना कह रहे, वो हाँ कह रहे, वो ना कह रहे, गोपियाँ कह रहे नहीं आप तो ऐसे ही हो, बिल्कुल भी उसके योग्य नहीं हो। तो बाद में तय होता है कि अगर आप राम हो तो दिखाओ, आप राम राम हो के दिखाओ। तो वो कहते हैं गोपियों को सब आंखें बंद करो और अपने आंखें बंद करो, फिर कहते हैं आंखें खोलो, जब आंखें खोलते हैं तो नीले कृष्ण जो है वो हरे रंग के राम हो जाते हैं, मुरलीधारी कृष्ण धनुषधारी राम बन जाते हैं, लक्ष्मण भी गोरे धनुष लेकर आ जाते हैं और सारे ग्वाल बाल बंदर बन जाते हैं। और फिर राम ऐसे भाव में आ गए, सीता को खोज रहे हैं, तो सब समुद्र किनारे, समुद्र भी बीच में, समुद्र कहाँ है ब्रज में, भगवान रामचंद्र के रूप में श्री कृष्ण समुद्र निर्माण करते हैं, क्रिएट्स ओशन, और उसके किनारे बैठकर रामेश्वर लिंग स्थापन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और फिर समुद्र के पास आते हैं और सारे बंदर मिलकर ऐसे पत्थर पे राम लिखकर डालना शुरू करते हैं, और वो सागर जो प्रकट हो गया है वो सबके सामने, उसमें सब तैरने लगते हैं, और उसमें सब चलकर जब आगे पहुंचते हैं तो लंका उत्पन्न होती है वहां पर, श्रीलंका, और वहां से दशानन रावण प्रकट होता है, और यहां से राम धनुष लेते हैं और एक बाण मारते रावण का वध हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मिनी रामायण, है ना, ट्रेलर, तो ट्रेलर के रूप में पूरा दिखा देते हैं। आज भी वहां पर रामेश्वर महादेव हैं, उधर है, अभी ओशन जो है वो सूख गया है, और आज भी वहां पर सेतु है। आपको आश्चर्य होगा, जब मैं पहली बार गया था ना, ऐसा कांप रहा था मैं देख के, आई वाज लाइक सो थ्रिल्ड, आई जस्ट कुडंट बिलीव, कैसे एक लाइन बनी हुई है पत्थर की, बड़े दूर तक पहुंची हुई, और आगे श्रीलंका है, और ये सब जो समुद्र पैदा उत्पन्न हुआ और वो सेतु उत्पन्न हुआ, उसके एक तरफ ये सब गोपियां प्रेक्षक के रूप में बैठी थी, ऑडियंस के रूप में, और सारे ग्वाल बाल पार्टी ड्रामा के पार्टी में गए और उन्होंने सब दिखाया। जब भी फिर बाद में बोला आंखें बंद करो, ऐसे आवाज़ आई तो आंखें बंद किया गोपियों ने, फिर आवाज़ आई आंखें खोलो, तो नेत्र खोले तो फिर प्रभु श्री कृष्ण बलराम सारे ग्वाल बाल, तब गोपियों को लगा हाँ भाई सही बात है ये, लेकिन वो वहीं तक रह गया, वो भूल गए कि ये राम थे करके, फिर वापस वही अपना कन्हैया। फिर दूसरी एक ही जगह पर एक जिला लीला एक साथ में नहीं होती है, देखो भगवान के लीला में विविधता है, अगर वो माखन चुराते हैं उसको हर दिन माखन चोरी में विविधता है, कोई सेम चोरी नहीं करते, वो नॉट सेम मोनोटोनस एक्टिविटी, तो सुनने वालों को देखने वालों को भी बोर हो जाएगा, उनकी हर एक एक्टिविटी नई है, उनका हर दिन का स्वरूप जो है वो नया है, इसलिए उनका एक नाम है अदृष्टा, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, अरे गोपियों तो रोज देखते हैं उनको, फिर भी आज जो रूप देख रहे हैं वो कभी नहीं देखा है, आज जो दर्शन देख रहे हैं, आज जो गतिविधि देख रहे हैं वो पहले कभी देखी नहीं है, इसलिए आज जो देख रहे हैं वो पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उनका एक नाम है अदृष्टा। ये सब बिलोमंगल ठाकुर जी बताते हैं कृष्ण करुणामृत में, एक नाम अदृष्टा। तो वो भी उसी जगह पर दूसरी जगह दूसरी बार गए, अभी गोपियां उनको कह रही, अरे हमने तो सुना कि आप पिछले जन्म में राम और लक्ष्मण थे और आपने ऐसा किया वैसा किया। नहीं 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 मैंने कुछ नहीं, नो नो, मैं तो आपका फ्रेंड हूँ, मैं तो ग्वाल बाल हूँ, नंद बाबा का बेटा हूँ, वो तो राम है, भगवान है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो भी पहली बार एक बार वो बोल रहे थे और वो ना ना कर रहे थे, इस बार ये उनको कह रहे हैं कि आप हो और कृष्ण बोले मैं किधर, मैं नहीं नहीं मैं नहीं नहीं। फिर गोपियों के बाद एक ब्रह्मास्त्र है, मधुर ब्रह्मास्त्र है, हाँ, साक्षात भय भी जिससे भयभीत हैं वो पर्सनालिटी श्री कृष्ण। भय जो है ना, भय मूर्तिमान भय भी अगर आता है तो भी भगवान को देखकर कांपता है वो व्यक्ति। गोपियों के और ग्वाल बाल के एक लाइन से ऐसे एकदम कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं और वो एकदम स्टार्ट ट्रेम्बलिंग। तो क्या वाक्य है, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो कल हमारे खेल में आपको नहीं लेंगे, वी विल नॉट टेक यू इन टुमारोज प्ले, कल से हमारा आपका खेलना बंद। आप सोच सकते हैं, इतनी सिंपल सी बात है, मत खेलो क्या फर्क पड़ता है, आई विल गो टू वैकुंठ बैक। लेकिन नहीं, सारा वैकुंठ की स्थिति, सारा वैकुंठ का ऐश्वर्य, सारा वैकुंठ की जो ऐश्वर्य लीला, वो सब छोड़कर यहाँ ब्रज में चुरा कर माखन और छाछ पीने के लिए आते हैं वो। ऐसा कौन कब करता है बताइए आप, अगर उसमें आनंद नहीं है तो ऐसा कौन क्यों करेगा आप, है ना। अगर माखन चोरी करने खाने में अगर उससे अधिक आनंद नहीं है तो जो है वही अच्छा है ना, वो उसको छोड़ के यहाँ पर आने की जरूरत क्या है। उनको पता है कि वहां का पूरा ऐश्वर्य का साम्राज्य और लीला छोड़कर यहाँ आकर मेरा ही है सब मक्खन, लेकिन वो चुरा कर गोपियों के घर में खाने में जो आनंद है वो वैकुंठ के आनंद को तुच्छ बना देता है, इसलिए वो आ जाते। तो गोपियां कहती है उनको कि अगर आप राम लक्ष्मण का रूप नहीं दिखाओगे तो कल हम आपसे बात नहीं करेंगे। बस दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट कृष्णा कैन एवर रिसीव फ्रॉम एनीबडी इन ब्रज। ये ब्रज की विशेषता है, ये प्रेम का भाव है। तो जैसे ये धमकी आती है तुरंत आंख बंद करो, तुरंत राम लक्ष्मण फिर वही लीला होती है अलग प्रकार से। ऐसी लीलाएं हैं ब्रज में। अब एक बार वो नंद बाबा जो है ना, कालिया को दमन करने के बाद में कृष्ण वो लेट हो गया उनको, क्योंकि वैसे ही बलराम जी का बर्थडे था वो दिन, तो बलराम जी नहीं आए थे, उनका पूजन यज्ञ दान धम सब चल रहा था, तो वो रोहिणी और वो सब वहाँ रुके थे और बलराम जी को मना किया था आने के लिए। तो वो इधर कृष्ण भगवान कालिया ना को दमन करने के लिए नदी में कूद पड़े तो बहुत हाहाकार हो गया, अरे पॉइजन नदी में कूदे, वो तो पंछी भी जब उड़ता है उसके ऊपर तो वो सब हो गया, तो उसमें बहुत टाइम गया। फिर जब पता चला अरे वो कूद गया है बहुत देर तक अंदर ही है और वो खून ऊपर आ रहा है जल के ऊपर, वो किसका पता नहीं, खून कृष्ण का कि कालिया का पता नहीं है। तो सब मैसेज भेजा उनको, तो लोग सब कुछ बर्थडे सेलिब्रेशन छोड़ के बलराम भी और सब लोग भाग के आए उधर। उसके बाद में फिर और लीला चलती रही, भगवान ने सबको मनोरंजन किया अच्छी तरह से, डांस दिखाया, सब कुछ दिखाया, उसमें लेट हो गया। अभी कैसे हैं नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, उपनंद, सब नंद अभिनंद सब लोग गाय चराने आते नहीं है, ये बच्चे ही जाते हैं ना, और वो अपनी जगह पर अपनी गाय चराते हैं, वो ये बड़े गायों को लेकर अभी गोपाष्टमी के बाद में लंबे लंबे जाते हैं, तो इसमें ऑलरेडी शाम को आते हैं लौट के, और इसमें ये सब काम हो गया आज एक्स्ट्रा काम, तो बहुत ही लेट हो गया। और नंद बाबा सब लोग आ गए तो वो उधर ही रह गए, वृंदावन में रह गए। तो वृंदावन में रह गए तो उसी दिन वो अग्नि आया, दावाग्नि, एकदम अचानक सब थक के सो गए तो चारों तरफ अग्नि, तो सब लोग चिल्लाए अरे अग्नि अग्नि, तो भगवान ने अग्नि पी लिया, दावाग्नि पान किया, तो सब लोग अरे घर जाके से बोले पता है आज तो कन्हैया ने आग पी ली, तो बोले कभी मट्टी खाता है कभी कुछ करता है, कभी आज मैं आग पी ली तो मैया बहुत टेंशन में आ गई, अरे आग पीने लगा मेरा बालक क्या होगा, इसको समझ में नहीं आ रहा है आग कोई पीता है क्या, और ये सब बालक बोल रहे हैं, एक नहीं सब लोग बोल रहे हैं सच है। उसके बाद में वो रात में रुके और उस दिन अगले दिन एकादशी थी, नेचुरली ना बलराम जयंती कभी होती है पूर्णिमा, उसके बाद में बहुत सारी लीला हुई तो एकादशी आ गई। तो वो दिन उधर वो अंबिका वन में रुके, वो जी अंबिका का पूजन करने गए थे, सॉरी, तो अंबिका का पूजन करके वहीं रुके। अभी देखो नंद बाबा की कितनी महानता है, नंद बाबा राजा है, लेकिन सब जंगल में पेड़ के नीचे सो रहे हैं। नो टैबू, कोई जाओ नंदगांव से मखमल लेके आओ, राजा को वहाँ विश्राम करना है, पलंग लेके आओ, सेवकों को आदेश नहीं दिया रहे, सब लोग सो गए जंगल में। और एकादशी है तो नंद बाबा उठे बहुत सुबह और नदी में प्रवेश किया उन्होंने। नदी में प्रवेश किया तो वरुण देव के सैनिक के हिसाब से ऐसा वर्णन आता है कि वो सैनिक राक्षसी सैनिक था, राक्षसी मूड वाला सैनिक था, वरुण देव का था, लेकिन ही वॉज अ डिमोनियक सर्वेंट ऑफ वरुण देव। तो देखा अरे 3 बजे के पहले उतरा पानी में, रूल ब्रेक कर दिया, जलाशय का रूल ब्रेक कर दिया, अरेस्ट करो इसको। तो अरेस्ट करके नंद बाबा को ले गए जल के अंदर वरुण लोक में। बाद में हमारे आचार्य समझाते हैं कि उन्होंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया था, अंदर की बात होती ना, अंदर की बात क्या है कि ये वरुण देव सब देवता लोग कृष्ण की कृपा को लिए लालायित रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कहते ना जुगाड़ करना चाहते हैं कि जिससे कृष्ण का वैयक्तिक दर्शन मिले। हम लोग कैसे कुछ ना कुछ करके महाराज का अटेंशन कैच करना चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ 1-to-1 हो जाए इंटरेक्शन, है ना। सब लोगों का मन में कुछ ना कुछ रहता है, कोई ग्रीटिंग कार्ड बना के लेके आएगा, कोई फूल बना के लेके आएगा, बच्चों को आगे भेजेगा, बच्चे के पीछे कुछ जाएगा, ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं। तो वरुण देव को कृष्ण का दर्शन करके कृपा चाहिए थी, इसलिए उसने सैनिक के द्वारा इसको रॉन्गली अरेस्ट किया। तो फिर वो बाबा गए, नंद बाबा गए, अरे बाबा डूब गए जल में डूब गए, ऐसे करके देखा जाने वाले पैर दिख रहे हैं, आने वाले पैर नहीं दिख रहे हैं। तो कृष्ण भगवान समझ गए, तो फिर बोले मैं जाता हूँ अभी, तो कमर पट बांध लिया और जंप कर दिया पानी में, वो भी चले गए। बहुत देर तक वो भी नहीं आए, बोले बाबा भी गए और कन्हैया भी गया, सब टेंशन में आ गए बहुत। तो एनीवे कट टू कट शॉर्ट, वो उन्होंने जाके उन नंद बाबा को फिर देखकर रिहा किया। भगवान आए तो वरुण जी ने अपना सिंहासन उनको दिया, भगवान का पूजन किया, उसके बाद नंद बाबा का भी पूजन किया और फिर क्षमा मांगी और फिर आशीर्वाद दिया दोबारा मत करो। फिर बाबा को लेकर लौट के आए, नंद बाबा भी आश्चर्यचकित, अरे मेरे लाला वरुण देव सलाम कर रहे हो एवा को पूजन कर रहे हो एवा को। हाँ, बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे, जिसका सैनिक मुझे अरेस्ट करके लेके गया वो वरुण देव जो जिसका मालिक है वो मेरे लाला को वंदन कर रहा है। बड़ा प्रभावित हो गए थे, इंप्रेस, माय लाला इज नॉट ऑर्डिनरी बॉय। फिर भी उनको पता नहीं है, ये नहीं लग रहा है कि भगवान हो सकता है, नो ग्रेट आदमी है ये, बहुत ऐसा लग रहा है। तो जब आ रहे थे तो नंद बाबा ने कहा अरे मुझे जरा वैकुंठ का दर्शन कराओ, तो झट से दर्शन करा दिया पिताजी को। पिताजी बड़े खुश हो गए, वाह। और बाहर आए जब नदी के, दोनों बाहर आ गए ना जल से, तो एक अद्भुत बात हुई, दोनों जल से बाहर निकले तो दोनों गीले नहीं थे, सूखे थे बिल्कुल। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट व्हेन यू गो इन द वाटर, कि दोनों गीले बाहर निकलेंगे। वो सब देख रहे हैं, दोनों जल के बाहर निकलेंगे पूरा सूखे हैं दोनों। लेकिन वो बात कैसे भूल गए पूछना कि आप सूखे कैसे, क्योंकि नंद बाबा ने तुरंत बताया मैंने वैकुंठ का दर्शन किया। तो वो प्रश्न इवेपोरेट हो गया, उनको क्या लगा हमने क्या पाप किया है, हमको क्यों नहीं वैकुंठ दिखाते। तो कृष्ण कहते हैं अरे आपको वैकुंठ क्यों चाहिए, आपको मजा नहीं आएगा उधर, मैं जानता हूं आप लोगों को, आपको वहां बिल्कुल मजा नहीं आएगा। बोले हमको कुछ सुनना नहीं है, बाबा को दिखा हमको भी दिखा, हमको देखना है। बहुत जिद झिकझिक हुई वहां पर, बहुत जिद हुई। ये मैं सब क्यों बता रहा हूं, वैकुंठ और ब्रज का जो अंतर है वो बताने के लिए बता रहा हूं। ये सारी लीलाएं हमको कुछ ना कुछ बता रही है, कुछ ना कुछ संदेश दे रही है, इंपॉर्टेंट डीप मैसेज। तो बहुत ग्वाल बाल ने जिद किया, तो फिर कृष्ण जो है अभी उनकी बात मानने वाले हैं, तो फिर उन्होंने कहा आंखें बंद करो, और कुछ देर बाद बोला आंखें खोलो, तो सब लोग वैकुंठ में अभी नदी किनारे ऐसे पास में खड़े एकदम ऐसा बातें कर रहे हैं तू मैं करके। वहां पर देखते हैं क्या, बहुत लोग खड़े उधर, अच्छे अच्छे झकमक झकमक कपड़े पहन के, सब जगह सब कुछ चमक रहा है, एवरीथिंग इज शाइनिंग, एवरी ट्री इज शाइनिंग, एवरी प्लांट इज शाइनिंग, एवरी क्रीपर इज शाइनिंग, उसमें सब ज्वेल्स लगे हुए हैं, सब चमक रहे हैं, कैसा कोई साधारण कुछ ऐसा गुलाब का फूल है ही नहीं, सब चमक रहे हैं, एवरीथिंग इज एफलजेंट। और उसमें बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं ना, रिच लोग ऐसे रहते ना, कपड़े सब पहने हुए सब लोग हैं, उसमें कुछ बहुत सारे सैनिक हैं, वो भी बहुत एफलजेंट और बहुत रिच वस्त्र पहन के, उनका यूनिफॉर्म भी ऐसा है, शस्त्र अस्त्र चमकदार पहन के खड़े हुए हैं। और ये सारे करोड़ों करोड़ों लोगों के बाद में दूर एक ऊंचा सिंहासन है, वो भी बहुत रत्नों से भरा हुआ है, सब चमक रहा है, वो दूर से भी दिख रहा है, और उसमें कन्हैया राधा रानी बैठे हुए हैं, वो भी डिफरेंट रूप में बैठे हुए हैं, वो चार भुजा वाले होकर बैठे हुए हैं। चेहरे से लग रहा है कि हमारा कान्हा ही है, लेकिन चार भुजा वाला एकदम ऑफिशियल मूड में बैठा है, कोई हंसी, कोई परिहास, कोई विनोदी, ऐसा होता है ना भाव, मुश्किल जैसे बालक को भी देखते हैं ना हम लोग, तो चेहरे पर लगता है कि बहुत मस्ती वाला लड़का है, टू मच मिस्चरी, नॉटी नॉटी लुक इज देयर ऑन द फेस। वो नॉटी लुक भी गायब है, एकदम ऑफिशियल लुक है। राधा रानी भी एकदम ऐसा ऐश्वर्य संपन्न, मुकुट पहन के पूरा, तो ले अजीब दिख रो है लाला हमारो यहाँ पर। तो वो कैसे, जैसे उनका कैसा प्रवृत्ति होता है, उनको कन्हैया दिखेगा तो तुरंत जाके उनको मिलना होता है। उनका एक गेम होता है ब्रज में कि एक रोज गेम खेलते हैं, अक्सर सामान्यता साधारणता हमेशा खेलते हैं वो, क्या कि भाग के जाकर पहले कौन कृष्ण को टच करेगा, बलराम को कौन टच करेगा, दिस इज अ गेम। कितना आकर्षण है कृष्ण के प्रति, आई विल टच कृष्ण फर्स्ट, मैंने टच किया प्रश्न कृष्ण को पहले, ये उनका एक गेम है, इट्स सच अ सिली गेम, बट विथ लव दैट गेम बिकम सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू वॉन्ट टू टच कृष्ण आउट ऑफ लव। ऐसे एक बाल बाल उनको जाके तुरंत मिलना है उसको जाके, तो जाने का प्रयास कर रहे हैं, अरे सब जगह पर रोक है उनके लिए, ए कहाँ जा रहे हो, वो गाँव के लोग कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, क्योंकि ड्रेस तो उनका वही था ना, वनचारी, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से, वनमाला पहन के, कान में कुछ यहाँ पर फूल लगाए, यहाँ पर कुछ पेंसिल रखी, यहाँ पर कुछ रखा है, ऐसे ही अपना घूम रहे हैं आराम से, हाथ में डंडा है गाय हाँकने का, दिख रहे हैं ग्वाल बाल हैं सब, किसके जगह पर गोमूत्र गोबर भी लखा हुआ है, सब ऐसे ही है। तो उनको रोक दिया उन्होंने, थोड़े कहाँ जा रहे हो, थोड़े हमारे वृंदावन में हमारे देवता को हम रोज मिलते हैं, तुम्हारे देवता को मिलना चाहते हैं, थोड़े यहाँ पर देवताओं को मिलने का ऐसा रूल नहीं है, कोई भी उठकर नहीं मिल सकता है उनको, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारे रूल्स हैं, उधर ही खड़े रहो आप। तो वो झिकझिक करते हैं, लेकिन वो इतने सैनिक बलशाली होते हैं वैकुंठ वाले, वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत मायूस हो जाते हैं बहुत, वो बातें करने लगते हैं, अरे क्या फ़ायदा है इस वैकुंठ का, इस वैकुंठ में जो वैकुंठ का देवता है उसको मिल नहीं सकते, हमारा देवता बड़ा अच्छा है, जब चाहे मिल लो, जब चाहे गले चढ़ो, उसके कंधे पे चढ़ो, सर पे चढ़ो, कुछ भी करो, उसको चोटी खींचो, उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ का देवता जो है वो मिल नहीं सकते, उसको क्या फ़ायदा है वैकुंठ का। देखो उनको वैकुंठ का ऐश्वर्य के प्रति जरा सा भी आकर्षण नहीं हुआ, गांव का आदमी जाता है ना मुंबई में, तो बहुत उसकी आंखें ऐसे चकाचौंध हो जाती है, सब देख के पूरी एकदम छप छप, सब जगह पर जो सब एडवर्टाइजमेंट्स और वो सब दुकान शॉपिंग मॉल देख रहे, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, घड़ी चाहिए, ऐसा सब निर्माण होती इच्छा। उनको ना उधर भी ठाकुर के सिवा कोई मन में इच्छा नहीं उनके, और उसको मिल नहीं सकते हैं, इसी बात पर वैकुंठ को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, चाहिए ही नहीं हमको वैकुंठ ये, और आप दूसरे में बात करके ऐसा कुछ ही समय में तो कंक्लूजन पे आ गए हमको नहीं रहना यहाँ पर। तो ऐसी वैकुंठ की आसमंत जो मिस्टी एटमॉस्फेयर ना वैकुंठ का पूरा ऐसा वातावरण, उसमें से आवाज चीरती हुई आई, आंखें बंद करो, तो सबको अलबलों ने आंखें बंद कर दी, फिर आवाज आई आंखें खोलो, तो आंखें खोली तो वापस अंबिकावन के बाहर जमुना जी के किनारे, और कन्हैया भी खड़ा है, कह रहा है कैसा लगा वैकुंठ, अरे कैसा वैकुंठ, सब लोग एक एक करके लाइन से गले लग रहे हैं उसको, पहले बाद में बात कर रहे हैं, क्योंकि गले मिलने के लिए तड़प रहे थे ना वहां पर, गले नहीं मिल पाए, यहाँ पर पहले सब लोग एक के बाद ऐसा टाइट आलिंगन दे रहे हैं दिल भर के, अरे कन्हैया तो को आलिंगन देने में जो आनंद है वो किसी और चीज में ना है। देखो हम लोग अगर वैकुंठ पहुंच जाएंगे आज तो सब वृंदावन को भूल जाएंगे, सब हम सब केशीघाट राधा कुंड श्याम कुंड सब भूल जाएंगे, बोले अच्छा है वैकुंठ ही अच्छा है बढ़िया है, ये ग्वाल बालों की ब्रजवासियों की स्थिति नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिनके मन में किसी चीज की अभिलाषा ही नहीं है, एक कृष्ण और उसके आनंद के लिए छोड़कर और कोई अभिलाषा ही नहीं है, और बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि उनको चाहिए से दिखाते हैं, लेकिन करते केवल कृष्ण बलराम के लिए, ये ब्रज है। देखो ब्रज की महिमा, देखो ब्रज में वो ऐसा है ना, रामलीला में आप जानते हैं ना, जो रामलीला में दंडकारण्य में जब वो आई थी ना शूर्पणखा, तो शूर्पणखा आई पहले, उसने जो भी नाटक करना है वो सब हो गया ड्रामा, उसके बाद में नाक कान कट गई, तो भैयाओं को लेके आई वो, किसको लेके आई बताओ, हाँ बस दो, बस 14,000 और तीसरा नहीं, एक था त्रिशीर, तीन सर वाला, वही भाई है उसका, एक त्रिशीर, एक दूषण और एक खर। और खर रावण के जैसा ही बलवान था, सब सिद्धियों के साथ अवध्य था वो, रावण के जैसा ही उसको मारने वाला कोई नहीं था विश्व में। तो वो सब आए तीनों 14,000 सैनिकों के साथ, और जैसे अभी ये पंखे से बंद है समझो, ये चालू करेंगे और वो घूमने लगेंगे फास्ट स्पीड में, और आपको कोई पूछेगा कितने पत्ते हैं, तीन है कि चार है कि पाँच है, तो आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपको एक सर्कल दिखाई पड़ेगा फास्ट घूमने वाला, कौन सा पत्ता कौन कभी कहाँ स्थिति में है, कहाँ से घूम रहा है, पता ही नहीं चलेगा आपको, खाली एक एक लाइट कलर का ऐसा सर्कल दिखेगा आपको, पक्का पत्ता भी नहीं था, ऐसा एक सर्कल दिखेगा। उसकी तरह प्रभु रामचंद्र ने कब ये निकाल रहे हैं, कब लगा रहे हैं, कब खींच रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कब निकाल रहे हैं, कब लगा रहे हैं, कब खींच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना हाई स्पीड में उन्होंने 45 मिनट्स के अंदर 14,000 सैनिक, त्रिशीर, बाद में दूषण और एंड में खर को भी मार दिया। और इसकी प्रेक्षक कौन है, कौन देख रही है, शूर्पणखा देख रही है। तो वो इतनी इतनी प्रभावित हो गई, इतनी प्रभावित हो गई, जाके रावण को सब बताया, अरे ये तो इतना। सो ये रामलीला का है ना, तो कृष्ण लीला में क्या है, तो वो जब ये जब अभी ये जब हुआ ना, तब सीता देवी उनके साथ में नहीं थी। आपने राधा रानी के बारे में बोलने को बोला ना किसी ने, राधा रानी की ऐसी पोजीशन है कि राधा रानी के सामने किसी भी राक्षस का वध नहीं हुआ है, जानते हैं आप, राधा रानी होने ही देती नहीं है, इतनी करुणामयी है वो, प्रभु ने जो भी कुछ किया है अकेले में किया है, राधा रानी के सामने किसी का वध नहीं हुआ है। वैसे ही ये जब हुआ तब सीता देवी को एक गुफा में रखा गया था और लक्ष्मण जी वहां पहरा दे रहे थे, दिस इज फार अवे फ्रॉम द पर्णकुटी, और ये एकांत में युद्ध हो रहा है। तो लेकिन जब पता चला सीता देवी को बाद में, तो बोले बड़े दुष्ट हो आप, ऐसे लोगों को मारते हो कि क्या इतना स्पीड, और इतने स्पीड में कितनी क्रूरता दिखाई पड़ती है, अगर आप में करुणा होती तो आप थोड़ा सा धीरे से सोच के ही करते हैं भाई मारूँ कि नहीं मारूँ लेकिन ऐसे आपने मारा उनको। तो उन्होंने क्या वादा किया कि ठीक है अभी ये लीला में तो मुझे बहुत सारा कुछ करना है, लेकिन अगली लीला में ना मैं शस्त्र लेकर ही नहीं आऊँगा। तो 12-11 साल 52 दिन जो भी ब्रज में रहे, उन्होंने शस्त्र का उपयोग नहीं किया, किसी के स्तनाग्रह को चूसा, ओठों के सही ओठों से ही खत्म कर दिया, किसी को पैर का ऐसा खाली टच किया उसका वध कर दिया, किसी का गला ऐसे जब दबाया तो वो मर गया, किसी के मुंह में हाथ डाला वो मर गया, ऐसे ऐसे कुछ शस्त्र वस्त्र कुछ है नहीं। बहुत समय के बाद में उसकी सिद्धि का प्रयोग किया, बड़े हो गए अगासुर के अंदर, हाँ तप्त हो गए, फिर बकासुर के शरीर में गए उधर भी तप्त और बड़े हो गए, उसका गौला गला अवरुद्ध कर दिया, कुछ कुछ जगह पर सिद्धि का, लेकिन हाथ से पैर से उंगली से ऐसे ही सब वध किया। फिर भी राधा रानी कहते आप बड़े दुष्ट हो, क्योंकि इसके मुंह में हाथ डाला और मार दिया उसका आपने, कोई सुन रहे सब ना, वो व्यक्तिगत रूप में वहां उपस्थित नहीं है, अगर वो उपस्थित है तो वो वध नहीं कर सकते उसका, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु रूप लिया बाद में। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, ये मेरे जो पार्षद हैं वही मेरे अस्त्र है और शस्त्र है और उपांग और अंग सब वही हैं, और कोई किसी का वध नहीं किया, खाली राक्षसी प्रवृत्ति का वध किया, सबको भक्त बना दिया। ये एवोल्यूशन है। देखो और एक बात सुनो राधा रानी के बारे में, जब तक सीता जी वही राधा रानी ना, वो जब श्री जी सीता जी भी के रूप में थी, दो थे वो, तो फिर भी वध 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 सब चलता रहा, कुछ बातें हुई तो थोड़ा सा कोमल हो गए, वो फिर वो राधा रानी बन गई, ये कृष्ण बन गए, फिर भी वो ऐसे हाथ डाल के मुंह डाल के सब कुछ वध हो रहा है। जब राधा रानी ने उनके अंदर प्रवेश किया तब ये सब बंद हो गया, जब वो महाप्रभु बने, जब हृदय में भाव रूप में प्रवेश किया तब उनके हाथ से कोई वध नहीं हुआ, ना वध करने की बात हुई, टिक ही नहीं पाया कुछ हुआ। एक बार आया था चक्र निकाल के जय मदाय जगाय मदाय को मारने का, लेकिन उधर भी फेल हो गया प्रयास उनका। ये भी एक ब्रज का भाव है। तो मैं ये सब क्यों बता रहा था कि वो राधा रानी ब्रज की रानी है, वो ब्रजेश्वरी है, वो महारानी है, हाँ वो ब्रज में नियंत्रक वही है। कोई कृष्ण का नाम लेता है क्या वहां पर, सब जाते हैं तो जय श्री राधे करते हैं, वृंदावन से उतर से चालू होता है जय श्री राधे, कृष्ण को पुकारना है तो भी जय श्री राधे ही बोलते हैं क्योंकि राधा रानी को पुकार के पहले वही देखते हैं, बाद में राधा रानी देखती है। तो राधा रानी का आधिपत्य है वहां पर, तो एक और ब्रज का स्वरूप ऐसा है कि सब जगह राधा रानी का साम्राज्य है वो बलराम जी, लेकिन साम्राज्य किसका है, कंट्रोल किसका है, नियंत्रण किसका है, राधा रानी का है। इतना प्रभाव है कि कृष्ण को, कृष्ण के प्रति कंस को भय था कि ये मुझे मारेगा, क्योंकि ये देवकी का आठवां पुत्र है, ऐसे आकाशवाणी हुई थी। लेकिन ना आप मुझे बताओ, वास्तव में बताओ, कुछ देर था ऐसे, जब वो आ गए ना वहां पर मथुरा में, तो ये बेचारा आईने में देख रहा है और आईने में प्रतिमा में गर्दन ही नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ अद्भुत जो अनुभव है ना, पर्दा हिल रहा है, लगा रही है वो आ गया, वो आ गया, वो ये है। तो सहयोग बोला, महाराज कोई नहीं यहाँ पर। पानी पीने को दिया तो अरे पानी में भी दिखाई पड़ रहा है, पानी फेंक दिया, ग्लास टूट गया। बोले महाराज नहीं है, पानी में कुछ नहीं है, सब ठीक है, पर्दा में पीछे भी वो नहीं है, और आप ऐसा क्यों लग रहे हैं आपको? तो वो भय, क्योंकि उसका मृत्यु समय आया था। लेकिन आप बताइए, समझो आप मुझसे डरते हो, बहुत भयंकर डरते हो मुझसे, तो मेरे लिए कुछ करोगे आप? क्या मेरे को कुछ डंडा भेजोगे या कुछ पत्थर मारोगे मुझे, ऐसा कुछ करोगे? आपको पता है मुझे अगर क्रोध आ गया तो मैं नष्ट कर सकता हूँ आपको। लेकिन कंस को कृष्ण का उतना भय नहीं था। प्रूफ क्या है? अगर उतना भय होता तो एक हर एक दिन राक्षस को नहीं भेजता उसको मारने के लिए। थिंक अबाउट इट। अगर आप किसी डर रहे हो तो उसको जाके उकसाओगे, आपको शेर से डर है तो शेर को पत्थर मारोगे आप, शेर आपको खा जाएगा आपका एक मिनट के अंदर। बैठा है शांति सो रहा है, सोने दो, सोते हुए शेर को जगाओ मत, मैं डरता हूँ उससे, डोंट डिस्टर्ब हिम, गो अवे फ्रॉम हियर। लेकिन कंस ने, वो सुखदेव जी केवल कुछ कुछ राक्षसों का वर्णन करते हैं, उनके पास समय बहुत कम था, लेकिन अन्य शास्त्रों में लिखा है कि हर रोज सवेरे एक हो जाता ओरिएंटेशन प्रोग्राम वेन्यू इन मथुरा, हर एक नए आदमी को आज चल रहा है ओरिएंटेशन, कि नीले रंग का पीले पीतांबर वाला मोरपंख वाला मुरली वाला एक लड़का है, उसको मारना है आपको, रोज ओरिएंटेशन हो रहा है। हर रोज एक राक्षस आता था ब्रज में, और ऑफकोर्स उसको कृष्ण मारते थे, इसलिए वो वापस लौट के जाता नहीं था बोलने के लिए क्या हुआ उधर, ओनली वन वे टिकट, रिटर्न टिकट वेस्ट। सब लोगों का रिटर्न टिकट था लेकिन सबका रिटर्न टिकट वेस्ट, कोई लौट के आया नहीं बताने के लिए आंखों देखा हाल क्या है, नया आदमी जा रहा है वापस एक बार। लेकिन एक बार क्या हुआ, कृष्ण बलराम, ये रोज का आतंक है ना, रोज का, तो उपनंद महाराज ने सुबह मैंने बताया ना, उपनंद महाराज ने सोचा कि अभी ये रोज का आतंक है ना बालकों के लिए बहुत घातक है, कभी भी ये बालकों की मृत्यु हो सकती है, कभी इनके इनके इतने छोटे से बालक, इनके इनको जान से मारने के लिए ये प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं कोई कुछ चिमटा निकाल रहा है, कोई कुछ चटका दे रहा है, ऐसा नहीं, उनका वध करने के लिए प्रयास हो रहा है, इतना भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो भी कृष्ण बलराम के लिए ये गोकुल सुरक्षित नहीं है, एकदम जमुना जी के उस तरफ, एकदम इस तरफ, एकदम जम मारेगा तो जमुना जी के पार, तो यहाँ से हमको जाना चाहिए। तो उस समय उन्होंने जो, अभी कैसा है ना, हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी एक रूल है, समझा बोलते हो कि सर ये ऑफिस के लिए जगह अच्छी नहीं है, तो बॉस क्या बोलेगा, डोंट टेल मी द प्रॉब्लम, कम अप विथ सोल्यूशन। खाली ये बात बोलना कि ऑफिस अच्छा नहीं है, दूसरा अच्छा ऑफिस कहाँ है वो बताओ, कम विथ सोल्यूशन देन विल एग्जीक्यूट। तो उन्होंने भी वहाँ पर प्रपोजल दिया कि वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, उसके बीच में गोवर्धन है, उसमें जमुना जी बहती है, नंदीश्वर और भूतेश्वर के गोकुल के बीच में है, वो बहुत सुंदर जगह है, ऐसा बताया। तो फिर उन्होंने कहा ओके विल मूव, तो ये शिफ्ट हो गए। वो बहुत लंबी कहानी है, कैसे शिफ्ट हुए, कैसे ट्रैवलिंग किया, वो कथा एक बताऊंगा बीच में आपको मैं, मुझे याद करना। क्या याद करेंगे मुझे आप? मुझे याद करना कि 105 साली बुढ़िया, साल की बुढ़िया गोपी की कथा मैं बताऊंगा आपको, मुझे याद करना है, अगर भूल गया तो बताना है, एंड होगा तभी मैं वापस चालू करूंगा उसके लिए, लेकिन बताऊंगा जरूर आपको। तो ये शिफ्ट हो गए और वो नंदगांव में बस गए, ये बरसाना में बस गए। अभी नेक्स्ट डे वापस ओरिएंटेशन हो गया किसका, और वो पहुंचा उधर तो पूरा सिटी खाली, नो नामो निशान कि कोई रहता है यहाँ पर, सब कुछ वाइंड अप। तो वापस आकर आया, एक ही आदमी वापस आया बोलने के लिए कि अरे वो कोई है नहीं उधर। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने सेनापति को भेजा, दो सेनापति, दोनों उसके बालक, हाऊ बुलाऊ और उसके दो बालक, चार लोगों को भेजा, जाओ ढूंढो जहां कहीं भी है पूरा ढूंढ के निकालो उसको, ब्रज में ही होगा, कहां जाएगा ब्रज के बाहर। तो उत्तर दिशा में जाते 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 रहे तो नंदगांव में दिखा, अरे ये तो बालक खेल रहे हैं सब लोग, वो जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो खेलते हुए दिखाया, अरे अरे अच्छा हो गया, जो आके सब पकड़ने गए ना उधर ही पत्थर बन गए वो। क्यों? क्योंकि शांडिल्य मुनि को इन राक्षसों ने बहुत कष्ट दिया था, तो उनको भगाने के लिए उन्होंने शाप दिया था कि यहाँ पर जो भी प्रवेश करेगा ना नंदगांव में पत्थर बन जाएगा। नंदगांव में एंट्री करते ही वो पकड़ने जाने के बल ही पत्थर हो गए, ऐसे ही पकड़ने के पोजीशन में पत्थर हो गए। चार पहाड़ जैसे पत्थरीले चार आकार बने उसके। तो वो भी बेचारे वापस लौट के नहीं आए, तो भी कंस परेशान हो गया। तो मेरा तो जो क्या कहते हैं उसको, भरोसे वाला जो सेनापति था वो भी वापस नहीं आया, मैं खुद जाता हूँ। काले घोड़े पर बैठकर निकला वो भी जा रहा है, गोकुल से निकला आगे, जाते 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 वो वृंदावन को पार, एंड में वृंदावन के जैसे बरसाने में प्रवेश किया ना, वो कन्या हो गया, ही बिकेम अ वुमन। राधा रानी ने कुछ तोना जादू मंत्र कुछ किया क्या? राधा रानी उधर भानोकर नाम की जगह है, बहुत सुंदर जगह है, वृषभानु महाराज का प्राइवेट कुंड है वो, बहुत सारे प्राइवेट कुंड है, उसमें से एक विशाल जल महल वाला कुंड है वो। जल महल का मतलब क्या होता है? कुंड के आधे कुंड तक महल है उसके ऊपर, या अर्थात वो कुंड जो है उसके अंदर ही पिलर्स है, उसके अंदर ही कमरे बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे पानी है, फर्स्ट फ्लोर पे आपके कमरे हैं, आप जहां बैठोगे सब जगह पानी दिखेगा और हवा आएगी फर्स्ट क्लास। ऐसे ज्योमेट्रिक्स बनाते हैं उसके कि ऐसे हवा सब जगह घूमते रहेगी। वो जयपुर में है ना हवा महल, उसका क्या फंडा है, वो फिजिक्स ऐसा बना के रखा है उसको इस तरह से कि सदैव हवा घूमती रहेगी उसके अंदर। ऐसा एक हमारा टेक्नोलॉजी था पहले, तो वैसे हवा महल बना हुआ है उसके अंदर। वो भानु खर कहते हैं उसको, खर यानी जल जलाशय, भानु यानी भानु महाराज का। तो उसमें जल क्रीड़ा करने की भी व्यवस्था है, बैठने की भी व्यवस्था है, हवा खाने की भी व्यवस्था है, कुछ मीठा वीठा खाने की भी व्यवस्था है, सब बढ़िया व्यवस्था है उधर। तो उसके जल में ये अपनी सखियों के साथ में केवल स्नान कर रही है, बस कुछ नहीं कर रही है, दे आर ऑन देयर ओन एंजॉयिंग। और केवल बरसाना की सीमा में प्रवेश करके वो वहां उस कुंड के किनारे आया ना, तो उसको पता चला कि मैं अभी स्त्री बन गया हूं, यहां तक कि काला घोड़ा भी काली घोड़ी बन गया। इमेजिन, ये ब्रज है ना। राधा रानी को ना कृष्ण जैसा कोई मुंह लगाना, हाथ लगाना, हाथ डालना, पैर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसका केवल होना जरूरी है। शी वॉज देयर, दैट्स ऑल। उसका जो प्रभाव क्षेत्र था उसके अंदर कंस आते ही प्रभाव क्षेत्र के प्रभाव से वो कन्या बन गया। इमेजिन, ये ब्रज की और एक खासियत है। अभी वो भी एक लंबी कहानी है। तो गोपियों ने उनको बहुत चिढ़ाया, ए मोटल्ली गोपी, ए मोटल्ली गोपी, ए कंसनी गोपी, ऐसे बहुत सारे नाम दिए, बहुत मोटी हो, चलो कंडे उठाओ, चलो गोबर साफ करो, थोड़ा सा मोटापा कम हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा करके। आप सोच सकते हो इतना बड़ा पराक्रमी, जो देवता भी उसकी तलवार और आंखें को देखकर कांपते थे, वो अभी उसको लड़कियां मजाक कर रही है उसके साथ में, ऐसा उसको क्या कह रहे, अभी इतना जो कचरा कोई नहीं किया होगा उसका आज तक। मथुराधीश उग्रसेन को फेंक कर बनाया हुआ राजा है वो, इतना ताकत है उसके अंदर। तब तक शांत था, तब तक उग्रसेन राजा बने हुए थे, उसका सटक गया तो उसने उग्रसेन को ही फेंक दिया, सारे उग्रसेन के सैनिकों के साथ अरेस्ट कर दिया सबको कुछ ही क्षणों के अंदर, उसी समय जाके बैठ गया। और राज्याभिषेक ने कुछ नहीं, इतना पावरफुल था वो, विश्व भर में जितने राक्षस थे सबको जाकर चुनौतियां दे देकर पटक पटक के मारा। और मरने का समय आया तो उन्होंने बोला, अरे मारो मत, मारो मत, चलो चलो मथुरा में भर्ती हो जाओ, आपका क्वार्टर्स वहां पर है, ऑन कॉल रहने का उधर 24/7, जब बुलाऊंगा तो कॉल पे आने का। बस ऐसा महान महान राक्षसों को, जब जिसको जो कृष्ण ने मारा है ना, वो सारे राक्षसों के आदमी कंस ने युद्ध किया है। जस्ट सी, इतना पराक्रमी राजा, सब डरते थे उसके कहने से, सब यज्ञ बंद हो गए थे मथुरा में, और कोई उस प्रसंग के बारे में बात नहीं करना, ऐसा रूल था मथुरा में। वो दिन जो हुआ, आकाशवाणी हुई, उसके बाद में जो भी कुछ हुआ, छह बच्चे मारे, उसके बाद में सातवां बच्चा गायब, आठवां बच्चा भी गायब, ये कथा के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहिए, नाके पर नहीं, दुकान में नहीं, किधर भी नहीं, कोई भी, सब शांत। इतना दहशत थी उसकी, और वो यहां पर आके क्या हो गया, कन्या बन गया। अभी वापस आएंगे तो वो बोले, अरे महाराज क्या हो गया आपको, तो उधर इतनी परेशानी होगी, तो वहां जाने का कोई काम नहीं, और यहां सारी सखियां हास परियास कर रही है उसका। सोचो आप कितना एम्बेरेसमेंट है, इकड़े आड़ तिकड़े वीर, हाँ क्या करूं, इधर आग उधर तेल, तो यहां पर अच्छा क्यों है, क्योंकि वहां पर सब मेरे सेनापति मंत्री संतरी सब लोग मेरे ऐश्वर्य वाले लोग हैं, यहां पर तो ठीक है, गंवार लड़कियां हैं, हास परियास करेगी, सब भूल जाएगी बाद में, क्या है इसमें।
लेकिन वो जानती थी ये कंस महाराज हैं, वो जानती थी कि हमारे वसुदेव अपने नंद महाराज हमारे राजा और हमारे राजा वृषभानु महाराज इनको ही कर चुकाते हैं, इनके भय से जाकर कर चुकाते, सब पता था उनको। और वही महाराज यहाँ पर आकर कन्या बन गए और बेचारे आंखों में आंसू लेकर कंडे लिप रहे हैं, 6 महीने कंडे लिपवाए कंस से, वे ताने मार मार के सारे काम करवाए, गोबर गोमूत्र साफ करना, बोल रहे हमारे कैसे, हमें गुरु जी का हमारा नियम है यहाँ पर गौशाला में, पता है क्या नियम है, बोले गोबर डालते ही साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन में एक बार साफ करेंगे, क्योंकि क्या है ना गाय वर होते ना वो उसी में बैठते हैं तो उनके सब इधर सब लगता है, फिर वो सूख जाता है, उसकी पपड़ी निकलती है, वो बहुत वो आम गौशाला में दिखाई पड़ता है। तो गुरु जी का नियम क्या है, वो जैसे ही गिरता है वैसे तुरंत आपको निकालना चाहिए, वैसे काम करवाया उनसे, गिरना नहीं चाहिए, गिरे हो तुरंत। और रो रो के किया उसने काम, वो 6 महीने तक किया, बोलो कोई एस्केप कहाँ पर है, जाएगा किधर, कोई कैद करके रखा नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी कैद है, नो जेल नो कारागृह, फिर भी बंद है व्यक्ति। ये करामत किसकी है, राधा रानी की करामत है। उसने क्या बोला, यार रहो, जा सकता था वापस ना, गो बैक, वो जो काला घोड़ा घोड़ी बन गया उसको बैठ के जाओ वापस, नहीं जा सकता वो। आखिर में एक बार वृषभानु महाराज राधा रानी बेबी को लेकर आए तो ये दंडवत प्रणाम किया राधा रानी को, बोलो कैन यू इमेजिन कंसा डूइंग दंडवत प्रणाम, दुनिया दंडवत करती है उसको, वो सोचता भी नहीं कभी किसका दंडवत करूंगा, वो पिता को दंडवत करना चाहिए उसको जेल में डाल दिया उसने, तो वो दंडवत किसको करेगा, वो कोई योग्य व्यक्ति नहीं दंडवत करने के लिए। ऐसा व्यक्ति राधा रानी को 6 महीने में कितना उसका मन हताश हो गया रहेगा, इमेजिन कि वो दंडवत करने के लिए राजी हो गया स्वेच्छा से, कोई प्रीच नहीं किया उसको, कोई बोल रहा है भाई दंडवत करो उसको, राधा रानी है ऐसा कोई बोल नहीं रहा है उसको, वो खुद जाकर दंडवत किया, उसको पता चला कि ये सम्राज्ञी है यहाँ की, तो वो राधा रानी मूड में नहीं है उसको रिलीज करने के लिए। पिताजी ने बोला अरे ये हमारे महाराज है, इनको हम लोग टैक्स चुकाते हैं, छोड़ दो उनको, छोड़ दो, गिड़गिड़ा रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, छोड़ दो उसको। तो उंगली उठाई राधा रानी ने, दोबारा आओगे तो परमानेंट कन्या बनते रहोगे, अभी टेम्पररी रिलीज कर रही हूँ, दोबारा आओगे तो शाश्वत कन्या बनोगे, जाओ इस कुंड में स्नान करो, उधर जावट की बात है, ये जावट में किशोरी कुंड है जहाँ पर राधा रानी खेलती है, ये मेरा कुंड है, इधर स्नान करो। तो बेचारा अपने घोड़े को नहीं भुलाओ, घोड़ी को लेकर कूदा उसके अंदर, तो घोड़ी घोड़ा बन गया, ये कन्या थी वो पुरुष बन गया, वहीं पर छलांग लगाई घोड़े पर, वो जो भागा वहां से पीछे मुड़ के भी देखा नहीं, पता है क्यों नहीं देखा पीछे मुड़ के, एनी रीजन, मूड बदल गया तो, हे रुक 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 वापस रिटर्न चल वापस कन्या बन, थोड़ा सा कंडा लिपना बाकी है, ऐसा हो गया तो, इसलिए चांस लेना चाहता नहीं था वो, तुरंत बैठ के भाग गया। दोबारा कभी वो या उसका आदमी बरसानंद गांव में लौट के नहीं आया कभी। अभी बताओ किसको ज्यादा भय था, किसका ज्यादा भय था उसको, कृष्ण का कि राधा रानी। उसके बाद भी उसने कृष्ण को राक्षस भेजना बंद नहीं किया, उसके बाद में बहुत सारी लीला हुई, अरिष्टासुर को मारा है, केशी को मारा है, व्योमासुर को मारा है, हाँ कितना लोगों को मारा है उसके बाद में, तो उसका वो जो काम तो चालू रखा उसने, लेकिन कभी डेरिंग नहीं किया, किसी को बोल के रखा, सबको ओरिएंट किया था कि बरसाना नंदगांव में आपको जाना नहीं किसी भी हालत में, ये उसका प्रभाव है राधा रानी के क्षेत्र का, आधिपत्य का प्रभाव है। कृष्ण भी उनसे वो रहते हैं, हाँ हमेशा सदैव पहले आके दंडवत रज को करते हैं बरसाने के, उनको बाद में करते हैं, पहले दंड को रज करते हैं, फिर अपने आंसू बहाते हैं, वो रज को गीला करते हैं, उसका तिलक करते हैं, फिर जाते हैं। और गोपियाँ भी उनको बताती है राधा रानी को, गोपियों को भी कभी कभी कृष्ण को अपने वश में करने की इच्छा होती है ना, तो वो रज निकाल के उनको लगा देती है। हमारे कैसे होता है ना, बाबा होता है ना, वो मांत्रिक तांत्रिक को क्या करते हैं, कुछ भी आपको सुंगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, तो आप पूरा चले जाते हैं उनके पीछे, सब निकाल के देते, भ्रमित हो जाते, पूरे मोहित हो जाते। वैसे राधा रानी के चरणों की धूल लगाते ही कृष्ण मोहित हो जाते, अपने आप को भूल जाते कि कौन है क्या है, सर्वशक्तिमान हूँ, सब शक्तियों का स्रोत मैं हूँ, सब भूल जाते हूँ, पूरा प्रभावित हो जाते। एनीवे कथा तो कुछ और ही करनी थी, और मैं कुछ कोई और ही कथा बताते गया, कोई बात नहीं। फिर आते हैं वापस, क्या हुआ कि वो वसुदेव लौट के आए, देवी आकाश में गई, आठ भुजा वाली बनी, सारे देवता उसको स्तुति गान कर रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वो कंस ने देखा और उसने बोला, अरे मूर्ख कंस, क्या कर रहा है तू, बहन को तकलीफ दे रहा है, बहनोई को कष्ट दे रहा है, मूर्ख व्यक्ति है, बंद कर सबके, तुम्हारा काल तो कहीं और पैदा हो गया है। गर्ग संहिता में एक और बात बताई गई है, वो ये भी कहती है कि वही नहीं, उसकी शक्ति भी आई है वहां पर, उसने भी जन्म लिया है, सावधान रहना, अपने बहनोई और बहन को कष्ट मत देना। तो तुरंत गिड़गिड़ाया, मैंने सुबह बताया ना आपको, आज बताया कि कल बताया, कंस वहां पर ये जब देखा क्योंकि तो बाकी सारे बच्चे तो मर गए ना उधर ही लेकिन ये जो बालिका को उठाने का प्रयास किया, वो तो देवी बनी आकाश में, और वो जानता है उसको हुई शी, तो डर गया, वो एकदम चरणों में गिर गया, क्योंकि वो इनके पक्ष में बात कर रही थी ना, वो इनको छोड़ दे, इनको कष्ट मत देना, तुम्हारा काल उधर आ गया है, दोनों तरफ से धमकी दे दिया उनको। तो फिर वो चरणों में गिर गया, अगर कोई भी होता ना तो मुंह पे लात मारने का मौका नहीं गवाता, क्योंकि इतना बढ़िया मौका रिवेंज लेने का, प्रतिशोध लेने का और कभी मिलता नहीं किसी को इसके प्रति। सही बोला ना, अब आए हो उस पार के नीचे, हाँ दबा दो उसको। लेकिन देवकी ने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कृष्ण की ऑल मिजरेबल एक्सपीरियंसेस आर नलीफाइड व्हेन वन गेट्स ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ दर्शन ऑफ कृष्णा। जब कृष्ण के दर्शन का लाभ होता है तो जितने भी प्रतिशोध, क्रोध, लोभ, काम, ये सब जो निगेटिव भावनाएं है ना, उसका एक इंप्रेशन मन में रहता है। आपकी एक इच्छा पूर्ण हो गई फिर भी वो दूसरी इच्छा रेडी है वहां पर, क्योंकि उसका साचा रेडी है उधर, उसका क्या कहते हैं, उसका प्लेस रेडी है उधर, नई नई इच्छाएं पैदा होती रहती है, तो वो सब रहता है। लेकिन कृष्ण की साक्षात्कार होने के पश्चात सब समाप्त हो जाता है, केवल प्रेम रहता है, करुणा रहती है और सद्गुण रहते हैं, नम्रता, सहनशीलता और अपार करुणा, ये सब जो है जीव के प्रति अपार करुणा निर्माण होती है। तो वो अभी कुछ ही घंटे पहले हुआ था ना सब कुछ, अभी रात को तो जन्म हुआ था, दर्शन हुआ था, कृष्ण का संवाद भी हुआ था, दुग्धपान भी कराया था, और रात को सुबह अभी ये सब हुआ ना, सुबह जब आया, अभी तो दिन भी नहीं हुआ है, सुबह सुबह आया, जैसे बच्ची रोई तो उधर के उधर ही सब कुछ हुआ है। देवी आकाश में तो ऐसे दिन में नहीं आई थी, वो तो भोर के समय पे निर्माण हुआ था उसका आकाश में, तो कुछ ही घंटे का समय था, तो वो अभी भी वो भाव में थी, वो तुरंत क्षमा कर दिया। ये हमें बहुत समझना जरूरी है कि क्षमा करना हर जीव के लिए बहुत आवश्यक है, दूसरों को क्षमा करना, क्योंकि जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तब तक हमें स्वयं को क्षमा नहीं मिल सकती है। यू हैव टू फॉरगिव टू बी फॉरगिवन फॉर योर ऑफेंसेस, अनलेस यू फॉरगिव यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी फॉरगिवन, आप क्षमा करने के देने के योग्य नहीं हो। तो यहां पर देवकी हमको बता रही है कि क्षमा करने की शक्ति कैसे आ सकती है, साधारण व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें कृष्ण का साक्षात्कार नहीं है, वो तो वन टू वन आदान प्रदान के ही है, तुमने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा बोला था, मैं भी ऐसा बोला था, इसी में रहते हैं, वन टू वन के ही रहते हैं, वो लेवल ही ऐसा है उसका। जब तक कृष्ण भावना नहीं आती है, कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता है, हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं, सेल्फ रियलाइज नहीं होते कृष्ण के प्रति, एक है सेल्फ रियलाइजेशन, एक है कृष्ण रियलाइजेशन, और वो एक साथ में होता है, कभी कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन वो हमारा स्वरूप कृष्ण का स्वरूप एक ही क्वालिटी का है, इसलिए जब हम अपने आप को रियलाइज करते हैं कृष्ण को भी रियलाइज करते हैं, क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक क्षमाशीलता पूर्ण रूप से हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगर इस विश्व में कोई क्षमाशीलता है, फॉरगिविंग कैपेसिटी है, तो केवल डिवोटीज के पास है, क्योंकि कुछ कुछ साक्षात्कार कृष्ण का उनके अंदर है, इसलिए उनका नाम जपते हैं वो। ज्ञान तो कम से कम है कि परम भगवान है, इनका नाम जपना चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये तो सबको पता है ना कम से कम, और उसके ऊपर आप कार्य भी कर रहे हैं, रोज जप भी करते हैं, नियम पालन करते हैं, सबको दीक्षा लेके रखे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत सारा काम, जन्माष्टमी में आके सेवा कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कृष्ण के लिए सॉफ्ट करा काम कर रहे हैं, तो कृष्ण का कुछ ना कुछ हद तक साक्षात्कार हमारे अंदर है। तो वही व्यक्ति किसी को थोड़ी बहुत क्षमा दे सकता है, माफी कर सकता है, और पूर्ण रूप से वही कर सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ आंसर टू गेट पावर टू फॉरगिव। नहीं तो जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं हमें गौलोक में प्रवेश नहीं मिलता है। क्षमा क्यों नहीं करते हम? क्योंकि हमारे में अभी भी ग्रज है ना, तो ग्रज नेगेटिव भावना है, वो ग्रज लेके गौलोक में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो ग्रज कब हटेगी? जब क्षमा करेंगे। फॉरगिव, यू मे नॉट फॉरगेट बट यू हैव टू फॉरगिव, क्योंकि फॉरगेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पर अमल नहीं करना है याद कर करके, लेकिन क्षमा करना बहुत जरूरी है। क्षमा करेंगे इसलिए कहते हैं कि क्षमा करते जाओ सब लोगों को वन बाय वन, जैसे हुआ अपराध तुरंत क्षमा करो, क्योंकि एंड में जब मरने का समय आएगा तो क्षमा करने के लिए बहुत लंबी लिस्ट होगी। अरे इसको भी करना है, उसको भी करना है, उसने मेरे को ऐसा किया था, उसने, कितना लंबा लिस्ट है, उसमें इतना कठिन प्रसंग है, मृत्यु सामने खड़ी है, शरीर जर्जर हो चुका है, मन भी दुर्बल हो चुका है, उसमें आपको इतना भयंकर हैवी काम करना है, सबको क्षमा 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 करते जाना है। इसलिए एंड के लिए बड़ा बर्डन मत रखो, क्लियर इट इमीडिएटली ताकि एंड में एकदम फ्री रहो। कोई क्षमा करने का काम ही नहीं, खाली प्रेमी करने का काम रखो बाकी। ये बहुत बड़ी सीख है देवकी के, देवकी का उदाहरण है ये। कृष्ण का दर्शन हुआ तो तत्क्षण कंस को क्षमा किया, कुछ याद भी नहीं आया उसको कि इसने क्या क्या किया। क्या किया उसने था पता है? 6 बच्चों को आंखों के सामने लगदा करके मारा, पीस पीस कर मारा। एक माँ के लिए, हम लोग तो देवकी भी नहीं है, वसुदेव भी नहीं है, वो तो हम कथा सुन रहे, किसी की कथा सुन रहे, लेकिन इमेजिन करो हम हैं उस जगह पर, हमारे बालक को अपने सामने पीसा जा रहा है, तो क्या क्या आपके हृदय पर गुजरेगी? कितनी प्रतिशोध की भावना रहेगी, क्रोध की भावना रहेगी, कितना 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 गहराई में रहेगा? वो कुछ भी नहीं था उसके मन में। दिस इज द प्रूफ ऑफ बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, क्या होता है उसके बाद। ओके, तो कंस तो प्योर डिवोटी बन गया उधर, क्योंकि ऐसा भाषण दिया, क्षमा मांगी भक्तों के सामने, बहन भक्त है उसकी, उसके चरणों में शरणागति स्वीकार की, क्षमा प्राप्त की, सब स्लेट खाली हो गया ना उसका, एक तरह से प्योर डिवोटी बन गया, साक्षात गोलोक धाम प्राप्ति की संभावना है। लेकिन घर गया, शायद रात तक प्योर डिवोटी था वो, लेकिन नेक्स्ट सभा में गया एज यूजुअल, ऑफिस जाना है तो ऑफिस गया, तो सब लोग आए ऑफिस में, मंत्री संतरी, वहाँ पर डिस्कशन हुआ उनका, तो बोला अरे बहुत अच्छा नहीं हुआ, आई एम वेरी सैड, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो अपने राजा को उदास देखकर सब लोगों ने काउंसलिंग शुरू किया अपने अपने तरीके से, सब आगे बोले अपने, वही शंबरासुर वही लोग हैं सब, नेमिचे यशस्वी कलाकार सब वही है ऑल, कौन कौन है उसमें, पुतना बकासुर शक्टासुर तृणावर्त अरिष्टासुर नरक सब है उधर, एवरीबडी इज द एक्सेप्ट नरकासुर एंड जरासंध, क्योंकि वो क्या मिंदे नहीं बने उसके, वो दोस्त बने, एक ससुर बना एक दोस्त बना, तो वो अपने राज्य में है, बाकी सब लोग यहाँ पर जमा है। सब लोग आके बोले अरे क्यों डरते हो आप, अरे देवताओं के वो कह रहे थे मुझे, देवता तो सब बने हुए हैं, सारे देवता ही है, ये वसुदेव ये नंद ये वृषभानु महाराज सब देवता है, ये देवताओं का षड्यंत्र है, ये गोपियां भी वेद की ऋचाएं हैं सब, ये इनका ही सब टूर है सब। बोले क्यों डरते हो आप, शंकर भगवान तो जप करने में बिजी है, उनको कहाँ टाइम है, ब्रह्मा जी भी अपने पोती में फंसे हुए हैं और विष्णु अपने भक्तों के हृदय में जाकर बैठे हुए हैं, बाकी चंद्र इंद्र वरुण को कौन पूछता है, उसके लिए आप ही काफी हो, आपने उनको सबको डरा के धमका के भगा दिया था अमरावती में जाकर, एक ही बार में सब लोग भाग गए थे सब, क्यों डरते हो आप, आराम करो आप, टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे सब। कितना हौसला दिया उसको, देखो अच्छा खासा बन गया था वो, लेकिन कुछ संगति, आपको अच्छी संगत मिलेगी और आप अच्छा बनोगे, उसके बाद में आपको अच्छी संगत मेंटेन करना है और कुसंगत छोड़ना है। ऐसे नहीं कि अच्छी संगत भी ले रहा हूँ और वो तो चालू है मेरा पहले वाला काम, लेकिन संगत भी करता हूँ मैं, हर हफ्ते में संतों को मिलता हूँ, लेकिन बाद में हर दिन शाम को जाकर दारू पीता हूँ, उनका भी संग करता हूँ, ये काम का चीज़ नहीं है। सत्संग करना चाहिए और कुसंगति छोड़नी चाहिए विथ रूल, ऐसा नॉट डैट कि बाय द वे कभी जाके आऊँगा, ऐसा नहीं, नो मीन्स नो और यस मीन्स यस इसके लिए। लेकिन नेक्स्ट जाके कुसंगति किया, सारी मति जो प्राप्त की थी पहले शाम को सारी नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, खत्म हो गई पूरी, फिर हौसला बढ़ा, एंड में पूतना आई। देखो कैसा बिल्डअप होता है, माया का जाल जो कैसा बिल्डअप होता है, अच्छा था वो लेकिन बिल्डअप हो गया और एंड में माया पूतना के क्या बोलते हैं, अरे महाराज आप डरते क्यों हो, मैं हूं ना, मैं खेसरी हूं, मैं तिनके को अभिमंत्रित करके हवाई जहाज बना के उस पर उड़ सकती हूं, और मैं नवजात शिशुओं का खून पीने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। आपको नवजात शिशुओं के बारे में डर है ना, अभी अभी जन्म हुआ है, आप कह रहे हो कल जन्म हुआ है वगैरह। मैं पिछले 7 दिन के जितने ब्रज में नवजात शिशु है सबको मार दूंगी, उसमें रहेगा ना वो, तो मुझे पता नहीं वो कौन है, लेकिन वो उसमें ही खत्म हो जाएगा वो। मैं जाके जिसके घर में बालक का जन्म हुआ है 8 दिन पहले 10 दिन पहले सबको जाकर मेरे स्तन का विष पिलाऊंगी और मार डालूंगी। अहो बकीयम स्तनका अलकूटम, अपने स्तन में बहुत भयंकर कालकूट विष, जिसकी केवल बाष्प उसका आपको टच करेगा ना तो भी किसी भी जीव का अंत होगा, ऐसा कालकूट विष जो है अपने स्तन में भर दिया उसने, रूप बदल दिया, 12 मील का रूप था भयंकर, वो सुंदर लक्ष्मी जैसी देवी का रूप धारण किया उसने, हाथ में कमल लिया लेकिन पूरा विष भरा हुआ है स्तन में, और वो नाचते नाचते ब्रज में आ रही है, यहाँ दिख रही है, वहाँ दिख रही है, हाथ में कमल को ऐसे ऐसे खिला रही है, डांस कर रही है, सब पुरुषों को भी रिस्पॉन्स दे रही है, वो भी देख रहे हैं उसको, वो भी उसको भी। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि वो उसका जिस प्रकार से व्यवहार चल रहा है उससे वो पता चल रहा है कि वो अच्छे घर की औरत नहीं है, क्योंकि ब्रज में या मथुरा में जो अच्छे घर की स्त्री होती है वो तो पल्लू लेकर चलेगी, रोड पे कभी भी सर नहीं उठाएगी और पुरुषों से संवाद नहीं करेगी वो, हे हेलो हाउ आर यू उपनंद बाबा कैसे हो ठीक हो ना, ऐसे नहीं करेगी, तो सर झुका के जाएगी क्योंकि वो मर्यादा है उसकी, वो सबके साथ में ऐसे बात नहीं करेंगी। दे विल वेरी मच यू नो कंट्रोल्ड ऑन द रोड, घर पे जाके फिर वो जो करना है। तो ये तो रोड पे सबके साथ संवाद कर रही है, सबको रिस्पॉन्स दे रही है, सबको बात कर रही है, और चाल इसकी ऐसी है कि वो सुसंस्कृत स्त्री की है ही नहीं, फिर भी सुखदेव जी क्यों उनका वर्णन कर रहे इतना। तो आचार्य समझाते हैं कि पुतना तो है, कुसंस्कृत है, पतित है, लेकिन जा तो कृष्ण के पास है ना, कृष्ण के पास जा रही है, शी इज गोइंग टू कृष्णा, शी इज वर्शिपेबल, शी इज ग्लोरिफाइबल, इसलिए सुखदेव जी अपने कुछ श्लोक खर्च कर रहे हैं उसके अंदर उसका वर्णन करने के लिए, बिकॉज शी इज गोइंग टू कृष्णा। और हजारों बच्चों को मारा उसने, सबको लगा कि देवी है आ रही है, सबको बालक को दे दिया, एक लेसन है उसके अंदर, कभी भी अपने बालक को अनजान आदमी के हाथ में मत देना, कितना भी अच्छा लगेगा वो डॉक्टर बन के आया, अगर अनजान व्यक्ति है तो नहीं देना है उसको अपने हाथ। कृष्ण के घर में पहुंचे तो भाई सबको लगा अरे वो नंदोत्सव जो हुआ ना उसमें लक्ष्मी का दर्शन नहीं हुआ था, लक्ष्मी थी, शश्वत इंदिरा क्या क्या श्लोक है वो, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, शाश्वत आश्रय इंदिरा ने ब्रज में ग्रहण किया था, श्रयत इंदिरा यानी लक्ष्मी देवी, शश्वदत्र ही वहीं पर, तत्र ही यानी वहीं पर वो रह रही है लेकिन दर्शन नहीं दे रही है, तो उनको लगा कि अरे लक्ष्मी देवी दर्शन नहीं हुआ तो शायद लक्ष्मी देवी अभी अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रही है, इतनी सुंदर हाथ में कमल, लक्ष्मी के हाथ में भी कमल होता है, यही कमलिनी होगी, तो सभी लोग उसके पीछे पीछे ही आ गए, ऐसे जिनके घर में बालक नहीं थे उनको क्या मालूम ये क्या करके आ रही है, तो वो सब पीछे पीछे आए और सीधे नंद भवन में प्रवेश किया, सब लोगों ने कहते दीदी देखो कौन आया है, लक्ष्मी देवी आई है, उसको देख के मोहित हो गई यशोदा देवी, और वो ऐसे किया तो बालक को तुरंत दे दिया उसके हाथ में, घर के आंगन के पीछे गई अपनों, जैसे बालक को देखा ना, बालक ने उसको देखा ना तो इंस्टेंट उसको ये साक्षात्कार हुआ कि ये विष्णु है, इंस्टेंट। वो पिक्चर दिखाया ना, वो सीरियल दिखाया, उसके अंदर भी ऐसी आंखें उस कृष्ण की चमकती है और वो पुतना से देखती है, अरे चकाचौंध होकर, अरे बाप रे ये तो साधारण बालक नहीं है, लेकिन मेरे स्तन पे लगे हुए कालकूट से ये नहीं बच सकता, कितना इल्यूजन स्ट्रांग होता है ना, देखो पता चल रहा है कि ये काल का काल है लेकिन फिर भी अपने ऊपर कितना भरोसा है कि मेरे पास कालकूट विष है, इसको पिलाऊंगे तो मर जाएगा ये, तो पीछे ले गई बैठ के, बोले स्तन को मुख लगाया, अब अभी मेरा काम हो गया, आराम से बैठी हुई वो आराम से अपना काम कर रहे हैं आँख बंद करके, प्रभु जी ने बताया सब कारण आँख क्यों बंद किया, एक कारण बताना भूल गए, वो ये कारण है कि सबसे पहले अगर किसको दुष्कृतिना को मारना है तो वो स्त्री है, जैसे राम को भी पहले किसको मारना पड़ा, ताड़का को मारना पड़ा, तो राम बहुत नाराज थे कि अरे मैंने इतनी वीरता को प्राप्त किया है और थोड़ी औरत को मारने के लिए, फिर विश्वामित्र को प्रीचिंग करना पड़ा, अरे वो ठीक है तुम्हारा नियम, वो ताड़का है लेकिन वो सबका संहार कर रही है तो मारो उसको, तो उधर भी पहली राक्षसी को मारना पड़ा, इधर भी अवतार में भी पहली औरत ही आई सामने तो आँख बंद कर लिया, फिर शिव जी का ध्यान किया, फिर और बहुत सर का ध्यान किया, बहुत सोचा उसके बारे में, लेकिन मुंह से अपना काम चालू रखा, सब विष पी लिया। उसको लगता है कि मर जाएगा, अभी इतना विष पिएगा तो कैसा जिंदा रहेगा। विष पी लिया, दूध भी पी लिया, और फिर प्राण खींचे। जब भी प्राण खींचने का समय आया तब इसको भयंकर दर्द हुआ, इतना भयंकर दर्द हुआ कि अपना मेकअप वो बनाए रखना इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए। डिसगाइज, यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आपका जो ढोंग है ना, वो तब तक आप संभाल के रख सकते हो जब तक आपका कोई विकार बढ़ ना जाए। यानी भूख अगर लगेगी, या काम वासना जागृत हो जाएगी, या क्रोध आएगा, या भय उत्पन्न होगा, तो जब ये विकार ऐसा भयंकर रूप धारण करेगा ना, तो आपका डिसगाइज आप मेंटेन नहीं कर पाओगे कभी भी। ऐसा एक कुत्ता एक बार शेर का चमड़ी पहनकर राजा बना जंगल का, बहुत दिन राज करता रहा। एक दिन एक कुत्ती वहां पर आई तो तुरंत उसके पीछे लगा, सबको पता लगा कि ये कुत्ता है, शेर नहीं है। उसकी जब काम वासना जागृत हो गई कुत्ती को देखकर, तो भूल गया कि मैंने चर्म पहना हुआ है, मेरे को बनाए रखना है, कम से कम यहाँ रखना है, बाद में फिर शाम को देखना है क्या करना है। लेकिन वो इतना काम वासना से बस हो गया कि वो चमड़ी फेंक दिया उसने शेर का और भागा उसके पीछे। बहुत दिन दिखाई नहीं दी मेरी पत्नी। वैसे ही जब उसका दर्द शुरू हुआ तो दर्द से वो शी वॉज ओवरवेल्म, दर्द से विभोर हो गई वो। तो दर्द के प्रभाव में शी कुड मेंटेन हर ब्यूटिफुल फॉर्म, तो 12 मील की बनी और छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे ऐसे करके चिल्ला रही है, भाग रही है। और कृष्ण भी उसको ना ऐसे अंदर से योग माया के प्रभाव से उसको ना गोकुल के बाहर ले गए कृष्ण उसको, तो वो जानते थे कहीं भी गिरेगी तो नुकसान ही करेगी, महल महल चकनाचूर हो जाएंगे, खेती नष्ट हो जाएगी, नुकसान करेगी। तो हमको क्या करना है, हमको उसको वहां ले जाना है जहां कंस ने एक बहुत बड़ा 12 मील का लंबा बगीचा बना के रखा है। वो गोकुल के बिल्कुल बाहर है लेकिन ब्रज के साइड में है, जमुना जी के इस साइड में है, और वहां के सारे फल फूल जितने सुंदर सुंदर चीजें हैं वो सब कंस को पहुंचते थे। जैसे कोई धनी आदमी होता है ना, उसका धान में फार्म होता है, तो वहां गाय रखते हैं, वहां पर फल सब ऑर्गेनिक, और वहां से रोज गाड़ी जाती है फल और दूध लेकर मुंबई पहुंचती है, और वहां पर वो उसका आनंद लेते हैं। वैसे किसी को नहीं, सब राक्षस पैरा दे रहे हैं, सब वहां पर कल्टिवेशन हो रहा है और सब कुछ वहां पहुंच रहा है। तो ये 12 मील का खेत उसका जो बगीचा उपवन, वो 12 मील के बराबर ये एक पुतना जाके वहां गिरा देते हैं भगवान। कहते हैं कि हर पेड़ पाउडर हो गया पूरा, बड़े बड़े वृक्ष थे, क्या क्या महल थे, सब कुछ सब चकना चूर हो गया पूरा। और अभी कैसा दिख रहा है, इतने से बालक, कितने दिन के थे वो, 6 डेज, 6 दिन के नवजात शिशु थे। कितने से होते हैं, हमारे बालक भी कितने से होते हैं। 12 मील के औरत के शरीर पर अगर 6 दिन का बालक अगर है तो एक ब्लू बिंदु दिख रहा है वो, खाली ब्लू बिंदु उसके शरीर पर। उसके शरीर इतना बड़ा है कि जब वो गिरा ना तो उसका हाथ ऐसे गिरे बड़े बड़े, तो वो भी कई सैकड़ों फीट थे ऐसे ऊपर, यानी ऐसे हाथ उसके ऊपर, उसका मुंह। और अपने जब सोते हैं ना हम लोग तो ये भी हनुवटी उसके ऊपर होती है ना, सर पौड़ी के ऊपर होती है, उसके ऊपर नाक, उसके ऊपर सर, वो भी उसके ऊपर था। और बाद में उसकी छाती, अगर आपको जाना है तो आपको या तो मार्ग नहीं है कि तो कैसे जाएंगे आप, तो उसके ऊपर छाती, उसके ऊपर स्तन, वो 2 बड़े पर्वत की तरह, और वो पर्वत के शिखर पर ये बालक चिपका हुआ है। इमेजिन, अभी ये मर गई है, वो छाड़ छाड़ करके प्राण छोड़ दिए उसने। प्रॉब्लम क्या है, अभी बालक ऊपर अभी भी खेल रहे हैं, उसको लाना कैसे है। बस सोचो प्रैक्टिकली, आप वहां पर खड़े होंगे, वहां पर हजारों ग्वाल बाल इकट्ठा हुए, सोच रहे क्या करे क्या करे, कैसे निकाले, बालक तो आराम से बैठा लेकिन लाए कैसे नीचे उसको। तो उन्होंने देखा कि उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, लाल रंग के बाल लंबे लंबे। तो उसमें कुछ कहते हैं, नंद बाबा ने गिरियारोहक टीम बुलाई, यू नो माउंटेनियरिंग का एक स्पेशलाइज ग्रुप था, उसको बुलाया। वो ग्रुप आया, वो देखा कि क्या करे क्या करे, कैसे चढ़ना है इस पर्वत पर। पर्वत ही था ना वो, एक पर्वत ही था ऐसे, पर्वत था, पर्वत प्राय 12 मील का एक विभाग था पूरा, 12 मील पूरा पर्वत ही पर्वत समान चीज थी। तो उन्होंने ना बालों को गांठें बनाई, जहाँ पे अभी आपके लंबे बाल है ना, एक नीचे गांठ लगाई, एक बीच में गांठ लगाई, और एक गांठ लगाई, इस करके स्टेप्स बनाए चढ़ने के लिए। और उस पर अपनी वो ना मराठी है ना, मावड़ा थे ना हमारे शिवाजी महाराज के, वो ऐसे पहाड़ पे चढ़ते थे ऐसे गांठ मार के, गांठ को ही पकड़ पकड़ कर। हमारे यहाँ पर भी नारियल के पेड़ पर भी ऐसे ही चढ़ते हैं, दूरी पे गांठ बड़ी बड़ी करते हैं, वो गांठ को ऐसे 2 उंगली ऐसे रख के ऊपर चढ़ते हैं। तो वो वैसे गांठ मार मार के उन्होंने कैसे भी करके उसके यहां तक चढ़े, वो बाल ऐसे नीचे से बाल है ना, यहां तक चढ़े। अभी उनको मुंह पे जाना है तो भी क्या करे, वो मुश्किल है उनको। तो उन्होंने देखा कि कुंडल जो कान के है ना, वो यहां से लेकर यहां पर चिपक रहे हैं,
तो कुंडल पे चढ़ के उधर मुंह पे प्रवेश किया। कहते हैं कि कुछ हजारों ग्वाल बाल तो मुंह पे घूम रहे थे उसके। तो बोला यहां से तो कूदना पड़ेगा क्योंकि हनुमती से छाती बहुत दूर है, तो वापस इधर से नीचे आए और फिर यहां से गए, फिर वापस उसी प्रकार से ट्रिक करके ऊपर चढ़े और फिर किसी ने बालक को लिया, फिर नीचे ट्रांसफर किया, फिर वैसे ही ट्रांसफर किया, फिर वो गांठों से उतरते उतरते फिर मैया के हाथ में दिया। कितना बड़ा प्रयास किया बालक को छुड़वाने के लिए। बालक आनंद में, मजे में, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। और सबको क्या लग रहा है, इतनी भयंकर पुतना उसके पास रहा ये कितने समय तक, बाप रे कितना बैड ओमेन, कितना प्रभाव पड़ा होगा उसका, डर गया होगा अनजान व्यक्ति के, वो भी ऐसी सुंदर थी अभी भयंकर बन गई तो कितना डर के क्या हो गया रहेगा। तो माता पिता क्या करते हैं, माता क्या करती है, जब भी लगता है कि बालक डर गया हो तो क्या करते हैं, पहले स्तनपान कराते हैं उसको। दिस इज अ प्रॉपरली मेडिकली प्रूव टेस्ट है वो। अगर वास्तव में बालक डर गया है ना या बहुत भयंकर बीमार है तो दूध नहीं पिएगा वो, और अगर वो ओके है तो दूध पिएगा आराम से, कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है, कोई बड़ा बुखार भी नहीं आया, उसको टाइफॉइड नहीं हुआ, कुछ नहीं, तुरंत पिएगा। कृष्ण भगवान ने आराम से दूध पिया मैया का अपना, कोई टेंशन नहीं। फिर भी सारे बोले नहीं नहीं देखो वो बालक दूध पी रहा है फिर भी उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा होगा, अब उसको क्या करना पड़ेगा। अभी सब लोग बोल रहे क्या करना पड़ेगा, ब्राह्मण आए, सांडिल्य मुनि आए, उन्होंने बोला गौशाला ले चलो उनको, और बछड़े की पूंछ है ना वो उसको लगाओ। सब मंडली कृष्ण को लेकर पूरी मिरवणूक है ना, क्या कहते हैं, जुलूस गौशाला पहुंचा, और बछड़े का जो पूंछ है उसको नीचे रखा और सब झाड़ रहे उसको, तो कहते हैं झाड़ा दे रहे झाड़ा। हाँ, वो झाड़ा देके एक एक शरीर के हिस्से पर झाड़ा देते हुए नाम का उच्चारण कर रहे हैं। गर्ग संहिता में पूरा डिटेल में दिया है किधर स्पर्श किया, कि दामोदर बोला, किधर कृष्ण का नाम भी लिया उसमें, लेकिन वो कृष्ण नहीं जो जिसको झाड़ा दे रहे हैं, वो कृष्ण गोलोकेश्वर श्री हरि का नाम ले रहे हैं। उनको पता नहीं कि यही वो, यही वो लड़का है, वो क्यों कृष्ण का नाम ले रहे जो गोलकेश्वर है। विष्णु के बहुत सारे नाम लिए और कृष्ण वहां पर स्मित हास्य कर रहे हैं। क्यों क्यों स्मित हास्य कर रहे हैं वो कि मुझे कष्ट हो रहा है तो मुझे मेरे कष्ट से रिहा करने के लिए मेरा ही नाम ले रहे हैं, इसलिए वो हंस रहे हैं कि पहली बार नाम संकीर्तन हुआ मेरे सामने मेरा ही, मुझे ही संकट से दूर करने के लिए, इसलिए वो हंसे वहां पर। अभी पुतना का शरीर है वहां पर पड़ा हुआ। अब इसमें एक बहुत विशेष बात यह है कि ये आने के पहले, क्योंकि जन्म हुआ, जन्मोत्सव समाप्त हुआ, तो क्या सबके मन में विचार आया कि देखो अभी टैक्स पे करने का समय है, तो टैक्स कलेक्टर्स आएंगे यहाँ पर, टैक्स कलेक्टर आएंगे यहाँ पर तो उनको आएगा तो कुछ दहशत क्यों पैदा करना है, इस टाइम हम लोग जाएंगे वहाँ पर, ताकि हमारे यहाँ पर जो आनंद है बच्चों जन्म होने का, जो हमारा जो आनंद है उसमें कोई विरजन या कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए इस बार हम जाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए सब लोग, नंद महाराज ने क्या किया, बड़े लोगों को बोला आप इंचार्ज हो, संभालना सब कुछ व्यवस्था, मैं जाके आता हूँ वृषभानु महाराज के साथ। दोनों गए और उधर टैक्स पे किया, टैक्स कलेक्टर तुम्हारे घर पे आएगा या आप टैक्स वाले के पास जाओगे, अच्छा यह है कि आप जाके पेमेंट करके आओ। तो वो नंद बाबा उधर थे वसुदेव के पास और वो उनको चेतावनी दे रहे हैं जल्दी जाना आपके लिए डेंजर है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको कैसे, लेकिन आपके बालकों को संकट हो सकता है, हिंट दिया उन्होंने, क्योंकि ये भी बताना नहीं है कि तुम्हारा बालक नहीं है वो मेरा बालक है, वो भी प्रॉब्लम है और चिंता भी है, करुणा भी है मन में और उपाय भी करना है सब कुछ, तो कितना बुद्धि लड़ के काम किया। तो वो आ रहे थे लौट के जल्दी जल्दी, उतने में पुतना का सारा लीला समाप्त हो गया। तो वो आए तो उनके सामने भी बालक को रिहा किया गया, उन्होंने सब टीम बुलाया, उसके बाद में अभी इसका दाह संस्कार करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे इसको, कहाँ शुरू करेंगे, मुख में अग्नि देंगे तो पांव तक पहुंचेगी क्या अग्नि, हम लोग मुखाग्नि थे ना मुखाग्नि, वो पूरा शरीर इतने चिता में रहता है, ये 12 मील का चिता कैसे बनाने का। तो निर्णय लिया उन्होंने मीटिंग करके कि इसको 108 टुकड़े करो इसके, तो 108 चिता बनाओ। उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था राक्षसी का, पुतना, जिसका पुत्र नहीं है, दास का कौन करेगा उसका। लेकिन जब कृष्ण का स्पर्श हुआ तो आप सब जानते ही हैं, जिसके अधरों का स्पर्श हुआ तो उन्होंने सब कुछ माफ कर दिया, उसका सब पापी कार्य पापी प्रवृत्ति सब कुछ माफ करके उसको सीधे धात्री का मोक्ष दे दिया। भाई गौलोक वृंदावन में डायरेक्ट यशोदा की धात्री बनी, वो ब्रह्मज्योति में विलीन नहीं हो गई या ज्योति निकल के कृष्ण के शरीर में विलीन नहीं हो गई, वो सीधे गौलोक धाम में पर्सनल सर्विस दिया कृष्ण का अपना, वो एक बात हो गई।
तो उससे वो पवित्र हो गई थी, पूरे सारे पाप कर्म नष्ट हो गए थे। तो 108 चिताएं बनाई उसकी, 108 ग्वाल बालों को मुखाग्नि देने के लिए खड़ा किया, तो एक पुत्र का 108 पुत्र रहे उसके, और उसको अग्नि जलाया, अग्नि दिया सबने मुखाग्नि के रूप में, सबने अपने अपना अग्नि दिया, 108 चिताएं जल रही थी। तो नंद बाबा को अगुरु चंदन कस्तूरी का सुगंध आया आसमंत में, वातावरण में सब जगह पर सुगंध आ रहा है। तो वो पूछ रहे क्या है ये, कह रहे जिसको कृष्ण का स्पर्श हो गया है उसके शरीर से ऐसे परिवर्तन होता है। तो वो पुतना इतनी भयंकर, इतनी क्या कहते हैं उसको, घृणास्पद थी वो पुतना, जब पुतना थी, लेकिन जब कृष्ण के संपर्क में आ गई तो उसका क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गई वो। तो कृष्ण जो है ना, वो ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा दयालु और कौन हो सकता है जो पुतना जैसे भयंकर घृणास्पद राक्षसी को केवल माँ बनकर, मतलब माँ बनकर नहीं आई थी वो, लेकिन माँ के जैसे कार्य किया उसने दूध पिलाने का, वो थोड़ी माँ बनकर दूध पिलाने के लिए आई थी, वो तो मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने केवल देखा कि मुझे दूध पिलाया, दूध कौन पिलाता है, माँ पिलाती है। ऐसे हमारे भगवान है, तो इसका रेफरेंस कई और जगह भी दिया जाता है कि इतने दयालु भगवान, इतने करुणामय भगवान और कौन हो सकते हैं, इतने दयालु तो मारने के हिसाब से आई थी, इसको भगवान ने उतार दिया। तो कौन थी ये पुतना, तो बाहुलाश्व राजा है, मिथिला के राजा है बाहुलाश्व, जिसके घर पे कृष्ण भी गए थे भोजन करने के लिए, दो रूप धारण करके गए थे ना, श्रुतदेव और बाहुलाश्व, एक ब्राह्मण था गरीब और एक राजा थे। वो बाहुलाश्व अभी भी है, मतलब तभी नारद मुनि उसके पास आए हैं और वो कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनकी जो चर्चा है वो गर्ग संहिता है, गर्ग महाराज ने उसको संकलित किया है, कंपाइल किया है, और वो गर्ग संहिता के रूप में प्रकट है। उसमें वो तुरंत पूछते हैं हर बार कि ये पुतना इतनी बड़ी भाग्य प्राप्त किया, कौन थी वो, पिछले जन्म में कौन थी। तो कहते हैं कि जब बलि महाराज की लीला हुई थी तो बलि महाराज की बहन, पत्नी, अनेक पत्नियां, सैनिक, मंत्री, संतरी, पुत्र, सब लोग वहां पर उपस्थित थे जब वो यज्ञ कर रहे थे इंद्र बनने के लिए। तो आखिरी यज्ञ में वामनदेव बटू आए, उपेंद्र भगवान, और जब आए तो वो इनका इतना सुंदर रूप था, इतना मनमोहक रूप था। वैसे भी जब आए उनका भी वर्णन सुखदेव जी करते हैं 8वें स्कंद में कि कैसे वो बालक 8 साल के इतने सुंदर, इतने तेजस्वी, इतने निरागस, इतने निष्पाप चेहरा था उनका, जैसे किसी भी माँ को देखकर वात्सल्य आ जाए, माँ का भाव आ जाए, ऐसा भाव था। तो जब वो यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश किया ना, तो प्रवेश करते ही जो बलि महाराज की बहन थी रत्नमाला राक्षसी, उसको देखकर ऐसा लगा कि अरे ये आप, इस बालक को मैं दूध पिलाऊं, ऐसा लग रहा है कि ये मेरी स्तनपान करे, ऐसा भाव निर्माण हुआ, प्योर प्योर लविंग सेंटिमेंट, इसमें कोई एडल्ट्रेशन, स्वार्थ, कोई कपटी भाव नहीं है, नेचुरल फिनोमिनन, एकदम लगा कि इसको मुझे स्तनपान कराना चाहिए बालक बनाकर, ना स्वीट बॉय। तो लग ही रहा था वो भाव देख रही थी उसको प्रेम से, लेकिन आगे देखती गई तो इसने 3 पग भूमि मांगी, तब तक तो भी ठीक था, फिर त्रिविक्रम का रूप धारण किया और त्रिविक्रम रूप धारण करके 2 कदमों में भिखारी बना दिया मेरे भाई को। चलो वो भी ठीक था, चलो कोई बात नहीं, खेल खेल में कभी हारते जीतते हैं, कभी शूरवीर आदमी है तो वापस युद्ध करेगा, वापस राज्य कमाएगा, राज संपत्तिवान बनेगा, तो वीर पुरुष है ना वो, लेकिन नहीं, 2 कदम पे उसका सारा साम्राज्य छीन लेने के बाद में वरुण पाश, वरुण को ऑर्डर दिया, वरुण पाश से उसको घसीटा बांध के, अपमानित किया एक तरह से, ऑफिशियल लेवल पे, आत्मा लेवल पे नहीं, ऑफिशियल लेवल पे भयंकर घोर अपमान हुआ उसका। और वो रत्नमाला को देखा नहीं गया कि मेरे प्रिय भैया को इतना अपमानित कर रहे हैं, वो भी प्रियजनों के सामने, आप्तजनों के सामने, सैनिकों के सामने, अधिकारियों के सामने, जो उनको सलाम करते हैं उनके सामने इतना अपमानित कर दिया, इतना, इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है। इतना अच्छा होता अगर मैं इस बालक को विष पिलाकर मार देती, ये मन में भाव आया उसके। तो वो 2 भाव कंबाइन हो गए, दूध भी पिलाना है, विष पिला के मारना भी है। तो उसने पुतना के रूप में जन्म लिया, पुतना के रूप में जन्म लिया और बहुत तपस्या किया और इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की उसने, बहुत भयंकर, तिनके को अभिमंत्रित करके हवाई जहाज बनाने का, उस पर बैठ के विश्वभर में घूमने का आकाश में, बालकों का रक्त पीना, क्या क्या करती थी वो, बहुत भयंकर कार्य करती, और अवध्य थी वो, बहुत भयंकर थी। कंस का जब भी राक्षसों का सामना हुआ ना बहुत लोगों का जा जाकर, तो नरकासुर के एक किंगडम में ये सब एक टोली बैठी हुई थी, उसमें शंबरासुर, अरिष्टासुर, बकासुर और धेनुकासुर सब बड़ी टोली वहाँ पर थी नरकासुर के फ्रेंडशिप सर्कल में। एक एक करके कंस ने उसको सबको डिफीट किया और सब लोग त्राही माम करके उसको फिर मारा नहीं और नौकर बना दिया। तो नरकासुर ने हाथ आगे करके फ्रेंडशिप बना दिया, लेकिन एंड में पुतना आई बड़ा रूप धारण करके अपना चैलेंज करके। तो कंस बोला अरे मैं औरत से युद्ध नहीं करता, तो मेरी बहन बन जा। तो उसको साथ युद्ध कुछ नहीं है, उसको बहन बना दिया। ऐसा ये उसकी जर्नी है, जन्म लेकर तपस्या, तपस्या से सिद्धि प्राप्ति, सिद्धि से नरकासुर के साथ निवास, वहां से कंस का आदान प्रदान, उसके बाद वो प्रेम से कंस के पास आई, बाकी सब लोग तो पकड़ के लाया, ये अपनी प्रेम से वहां पर आके रहने लगी, आश्वासन दे रही डोंट वरी मैं हूं ना। तो ये पुतना है फॉल्स गुरु, जो गलत रूप धारण करके हमको बहकाते हैं, गलत सिद्धांत बताते हैं और भगवान के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करते थे। तो ये पुतना जो है ये हमको बहुत ढूंढना है, आजकल के ज़माने में बहुत पुतनाएं घूम रहे हैं विश्व में, सारे ढोंगू लोंगी लोग गुरु बनकर सबको बहका रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको भी कुछ ढूंढना है, आपको पता होना चाहिए सही गुरु कौन है। तेरे में 5 बज गए, अभी आपको क्या करना है? 105 की वाली गोपी। तो कृष्णलीला तो अनंत है, रात रात तक बैठ सकते हैं, जन्माष्टमी का व्रत सफल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी अनंत लीलाएं हैं। कोई भागवत में है, गोपाल चंपू में है, गोविंद लीलामृत में है, गर्ग संहिता में है, आप खोलते जाओ और पढ़ते जाओ, कोई कमी नहीं है। हरिवंश पुराण है, भागवत का सप्लीमेंट है, उसमें है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं, सब कुछ खचा खच खजाना भरा हुआ है। लेने वाला चाहिए, लेने वाला ग्राहक नहीं है उधर, लेकिन कमी नहीं है कुछ चीज़ की। तो ये प्रसंग तब का है जब ही उपनंद बाबा ने परामर्श दिया कि अभी ये जगह सुरक्षित नहीं है, अभी हमको जाना है वृंदावन में। तो वृंदावन का एक श्लोक बताना जरूरी है, बहुत मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन उसका अर्थ यह है कि वृंदावन को देखते ही कृष्ण बलराम आह्लादित हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। तो सुखदेव जी लिखते हैं कि जो कृष्ण बलराम पूरे सृष्टि को, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को नहीं, पूरे सृष्टि को, निर्माण को आनंद देते हैं, उनको आनंद देने वाला वृंदावन है। इसलिए वृंदावन महत्वपूर्ण है, जो विश्व को आनंदित करते हैं उनको दर्शन मात्र से आनंदित करने वाले ये वृंदावन धाम है। इसलिए वो हमारे लिए भगवान से भी अधिक पूजनीय है, भगवान का ही स्वरूप है लेकिन भगवान से अधिक पूजनीय है, भगवान से अधिक दयालु हैं धाम के रूप में। तो अभी वो जा रहे हैं, तो बीच में उन्होंने एक हॉल्ट लिया है गोपाल चंपू में, उसका पूरा दीर्घ वर्णन है कि वृषभानु महाराज और नंद महाराज साथ में निकले, सारा अपना प्रॉपर्टी जो गाँव शहर राज्य जो था वो सब बैलगाड़ियों में उन्हें डाल दिया, और बैलगाड़ियाँ सामान भी लेके जा रही है, बीच में मखमल में नंद बाबा, बीच में मखमल में नंद बाबा के साथ यशोदा देवी अलग छकड़े पे, गोद में नंद बाबा नंद नंदन दूसरे छकड़े पे, मखमल पे रोहिणी बैठी उसके गोद में बलराम जी, ऐसा पूरा बहुत सुंदर 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 ताफा निकल रहा है। और सबने उन्होंने चटिकरा में हॉल्ट लिया है, उसकी कई लीलाएँ हैं उसकी, उधर क्या क्या हुआ। अर्धचंद्राकार छकड़े के द्वारा बाउंड्री बनाई, उसका श्लोक है भागवत में, अर्धचंद्राकृति बॉर्डर बनाई, उसके बीच में नंद बाबा ने अपना तंबू बनाया, उसी को लगकर वृषभानु बाबा ने अपना तंबू बनाया, पूरा रावलवासी वहाँ बस गए और गोकुलवासी यहाँ बस गए। और वर्णन आता है कि दोनों के तंबू बिल्कुल एक दूसरे को लग के थे, चिपक के थे, लेकिन आज के तारीख में छटिकरा से 28 किलोमीटर राधा कुंड है जहाँ पर बसोती गाँव में वृषभानु महाराज का तंबू था। से क्या समझते हैं आप कि तंबू कितने बड़े थे? वृषभानु महाराज का तंबू था बसौती गांव में था, राधा कुंड से 1 किलोमीटर दूर है, और इनका गांव इनका जो तंबू था छटिकरा में था, जो अभी वृंदावन से 6 किलोमीटर है, और छटिकरा से राधा कुंड की जो जगह है वो 28 किलोमीटर दूर है। तो यहां से वहां तक 28 किलोमीटर का एक तंबू, और वहां से आगे उनका तंबू, और दोनों एकदम चिपके हुए हैं, एकदम नेबरहुड। तो वहां पर क्या हुआ, वहां से निकलने का समय आया ना, तो एक बुढ़िया है 105 साल की गोपी, बहुत बुढ़ी है, वो देख रहे हैं कि कितने सुंदर लाला नंद यशोदा के गोद में बैठे हैं, कितना अच्छा होता अगर मेरे गोद में बैठते। ईर्ष्या नहीं है उसके अंदर, वाई शी वाई नॉट मी, ऐसा नहीं है, लेकिन वात्सल्य इतना है कि लग रहा था कि मेरे गोद में बैठेगा तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत, आई हील भी हैप्पी, आई ऑल्सो भी हैप्पी। लेकिन वो इतनी सिंपल गोपी थी, उसको लगा कि मेरी क्या पोजीशन है कि वो मेरे गोद में आए, क्या चांस है मेरा, कोई चांस ही नहीं है, मेरी कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि मैं प्रभावती की पत्नी हूँ या मैं उपनंद बाबा की या अभिनंद की पत्नी हूँ या और कोई बिग सर्कल में कोई हूँ, वीआईपी हूँ, कोई हूँ नहीं, सिंपल गोपी हूँ। तो केवल इच्छा ही इच्छा ही रह गई, लेकिन ऐसी इच्छा इच्छा रहती नहीं है ब्रज में कभी, क्योंकि एक जानने वाला है, सब इच्छाओं को जानता है। वो कौन है? वो जो गोद में बैठा ना बालक बनकर, बालक का नाटक कर रहा है, वो बालक बनकर परमात्मा बैठा है, वो जान जाता है कि ये गोपी के मन में मुझे मिलने की इच्छा है, मुझे लेने की। तो उन्होंने क्या किया, अपने मैया को प्रश्न पूछना शुरू किया। अभी अभी देखो कैसे ना, अभी समझो आपके बच्चे गोद में है और आपको कहीं ले जा रहे हो, तो बालक पूछता है ना, ये क्या है, वो क्या है, ये कौन है, ये वो कौन है, सब पूछते रहते ना। तो आप भी उनको बताते हो, हाँ ये तोता है, ये कौवा है, ये बिल्ली है, सब, ये आम का पेड़ है, ये सब ऐसे क्वेरीज, कितने क्वेरीज पूछते हैं बच्चे, और कभी भी उनको ना थकते हुए सारे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, कभी भी मुझे नहीं पता है, बस उजा था, गप कर रहा था, बस हल, कितनी प्रश्न विचारशील, ऐसा नहीं, बिल्कुल शांति से, संयम से सारे प्रश्नों का जो आपको पता है, जिस तरह से पता है, उत्तर देते रहना चाहिए, ताकि बालक को लगेगा कि मेरी माँ प्रयास तो कर रही है मेरे लिए, कम से कम अटेंशन तो दे रही है, उत्तर सही गलत तो आगे की बात है, लेकिन मुझे टाइम दे रही है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी वो सेम प्रश्न बार बार पूछते हैं, फिर भी मैया कभी भी थकती नहीं है उनको बोलने के लिए, वो अरे तो कौवा है, फिर एक घास खाएगा, बोलेगा मैया वो कौन है, अरे बेटा वो कौवा है। हाँ, और बूढ़ा होने के बाद में माँ सब भूलने लगती है, और गोली खाती है और भूल जाती है, बोलते बेटा मैंने गोली खाया क्या, हाँ मम्मी हमने खाया, तो ये पूछा और लड़के ने जवाब दिया, ये भी मैया भूल जाती है कुछ समय के बाद में, फिर बेटे को बेटा मैंने गोली खाई क्या, अरे खाया ना मम्मी आपने बताया ना आपको मैंने खाया करके, फिर वो भी भूल जाती है तीसरी बार, फिर चौथी बार बेटा मैंने गोली खाई क्या आज की, क्या चल रहा है मम्मी तुम्हारा, दिन भर अभी प्रश्न पूछते रहते हो, बताया ना आपने गोली खाई करके। देखो बालक के उत्तर में एक एक प्रश्न के बाद में कितना अंतर आ रहा है, इरिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग आफ्टर एवरी क्वेश्चन। और वही बालक बचपन में वही कौवे के बारे में 50 बार खाते वक्त प्रश्न पूछता था, उसी संयम के साथ, उसी कोमलता के साथ में बोल रहे थे, हाँ बेटा वो कौवा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि हमने हॉस्पिटल में एक नाटिका प्रस्तुत की थी, वही माता जी एक छोटे बालक के साथ में प्रश्न जो कर रही है, बालक को खिला रही है, वो प्रश्न पूछ रहा है, माता शांति से उत्तर दे रही है। फिर उसी नेक्स्ट सीन वो बुढ़ी माता जी दिखा रही है, और उसका बड़ा लड़का है वो कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और वो प्रश्न पूछ रही है गोली खाई क्या, गोली खाई क्या। तीसरे प्रश्न में ही उसका विकेट गिर गया लड़के का, फिर परपोट दिया गया, देखो ऐसे हम लोग हैं, ऐसी माँ है और आप ऐसे हैं। एनीवे, तो उन्होंने प्रश्न पूछना शुरू किया, और क्या प्रश्न पूछते हैं, जहां पर जोड़ी है वही प्रश्न पूछ रहे हैं, सिंगल को कुछ प्रश्न नहीं पूछने, जोड़ी मतलब ये कौन है, तो बोला ये कोयल है, उसके साथ में कौन है, तो उसकी तो पत्नी है, ये कौन है, ये तोता है, अरे उसके साथ में कौन है, ये तो मैना है ना, शुक और सारी, फिर ये कौन है, ये तो हिरन है, उसके साथ में कौन है, हिरनी है, ये कौन है, तो बैल है, उसके साथ में कौन है, गैया है, ऐसे करके जितने पूछ सकते हैं प्राणी पक्षी जितने भी जीव जोड़ी वाले पूछ सकते हैं सबका पूछ लिया, और मैया ने बड़ी शांति से उसका उत्तर दिया, एक आदर्श माता है वो, बड़ी शांति से उत्तर दिया। और ये सारे प्रश्नों का उत्तर सही सही अच्छी तरह से देने के बाद भी लास्ट प्रश्न पूछने के बाद में इच्छा ना करो जोर से रोने डोने लगा बालक, मराठी बोलते हैं मोटा भोंगा पसरला, मतलब भों करके रोने लगा, अरे क्या हुआ, जैसे रोने रोने लगा ना सारा कारवां रुक गया, सारे श्लोक ब्राह्मण वाद्य वृंद सब नृत्य करने वाले सब रुक गए, सबका यू टर्न उस चकड़े की तरह, चकड़े की ओर, क्या हुआ कन्हैया क्यों रो रहा है। तो मैया कह रहे मुझे भी पता नहीं, अभी तक तो शांत था, प्रश्न पूछ रहा था, मैंने जवाब दिया, अचानक रो रहा है। अभी कभी कभी बच्चे इतना रोते ना, आप उसको पूछे कि क्या हुआ बेटा, ऐसा करते ना हॉल में आपको, वो बोलने को भी नहीं होता है उनको, इतना रोते इतना दुखी रहते हैं कि वो सिसकियां भरते रहते हैं, उसको कहते हैं सिसकियां भरना, वो सिसकियां जब भरते हैं ना तभी आप बोल नहीं सकते हैं, वो वायु का ऐसा आदान प्रदान होता है कि उसमें कंठ से शब्द नहीं निकलता है, तो ये पूछते जा रहे क्या हुआ बेटा क्या हुआ, तो वो सिसकियाँ बढ़ते जा रहा है, इतना दुख हो रहा है उसको, कैसा भी संभल गया, तो बोलने लायक हो गया। बोला क्यों रो रहे हो बताओ, तो बोलता है सबकी बीवी है मेरी बीवी नहीं है। सबकी, जानवर है, पंछी है, छोटा है, बड़ा है, हर व्यक्ति की बीवी है सिवाय मेरी। अरे बेटा अभी और संयम से उत्तर दे रही है, बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो तुम अच्छी बहू ढूंढेंगे तुम्हें और विवाह कर देंगे, तुम्हारी भी बीवी होगी, ये बड़ा होने के लिए किसको टाइम है, मुझे अभी कभी बीवी चाहिए। बेटा ऐसा नहीं होता है, बाकी वो गुपी आंख समझा रही है, ऐसा नहीं होता है। मैया बोली, रोहिणी बोली, और भी बोली, प्रभावती बोली, सब लोग, तुंगी बोली, सब लोग आके बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बालक कैसे बोलता है, मुझे पार्ले जी बिस्किट का बॉक्स अभी चाहिए, राइट नाउ, दुकान बंद है, मुझे कुछ नहीं सुनना, आई वॉन्ट राइट नाउ। तो अभी मैं दरवाजा ठोकना शुरू करता हूँ, ठॉक 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 ठॉक, तो कैसा भी करके दुकान वाले को उठा के, दुकान खुलवा के ला के देते, भाई सो जा तू भी खा के, दरवाजा मत फटक फटकते बैठना। तो लग गया अभी मुझे अभी कभी बीवी चाहिए, अभी क्या करना है अभी, वो देखो समस्या है, फुलिश समस्या है, लेकिन समस्या तो है, समाधान तो करना ही पड़ेगा। सब गोपियों ने मीटिंग किया, अभी कुछ क्या करेंगे, तो एक काम करो, इसके छोटी उम्र की लड़कियों को इकट्ठा करो, फिर इसके उम्र वाले इकट्ठा करो, फिर इसके बड़ी इकट्ठा करो, फिर अविवाहित युवा इकट्ठा करो, फिर विवाहित गोपी इकट्ठा करो, फिर बच्चों वाली गोपी विवाहित इकट्ठा करो, फिर मध्यम वयीन, फिर वृद्ध, फिर अति वृद्ध, ऐसा करके सब ग्रुप बना के रेडी रखो। पता नहीं क्या इसका इसका क्या भरोसा नहीं, क्या मांगेगा, क्या बोलेगा, कुछ सिखाना नहीं, रेडी रहो आप, समय बहुत कम है अपने पास। तो सभी बालिकाओं को लेकर एक एक करके दिखाया, आउट आउट, ऐसे एक एक को लेके आते, सबको बात बात कर देते हैं। उसके बाद में समवयस्क लड़कियों को, ये पसंद करेंगे थोड़ा सा इसके उम्र के है तो अच्छा लगेगा, सबको बात कर दिया एक एक करके। उसके बाद में उसकी बड़ी, सब बड़ियों को बात कर दिया, फिर अविवाहित युवा, सबको बात कर दिया। अभी देखो सैकड़ों हजारों गोपियां हैं उधर, वैसे कोई 25 लोग का कारवा नहीं है, वो आधा घंटे में काम खत्म। तो फिर विवाहित उनको भी रिजेक्ट, बच्चे वाली विवाहित उनको भी रिजेक्ट, मध्यम वयीन वो भी रिजेक्ट, सफेद बाल वाली आने लगी उसको भी रिजेक्ट, सारी गोपियां रिजेक्ट हो गई, और केवल वो लास्ट बची सबसे बुढ़ी 105 साल की। अभी क्या करेंगे, अभी उसका भी नंबर लगा, वो जैसे ही उसको प्रस्तुत किया, झट से उसके गोद में जाके जंप मारी उन्होंने, बोले ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है, ये मेरे विवाह के योग्य है। सब लोगों ने ताली, आपने ताली कैसे बजाई, जोर से बजाओ तालियां। वैसे ही सब लोग ने जोरदार तालियां बजाई, हाँ बहुत आनंद आया सबको कि भाई समस्या तो समाधान हो गई कम से कम। तो छलांग लगाई और सब लोग बोल रहे, अरे क्या जोर की बहू ढूंढी है, क्या जोर की बहू ढूंढी है, क्या उसमें कॉमन कॉमन क्या है, अरे याऊ के मोड़े में दांत ना आए, वाऊ के मोड़े में भी दांत ना आए, ना परफेक्ट मैचिंग है, इसके मुंह में भी दांत नहीं है, उसके मुंह में भी दांत नहीं है, और वो भी बड़ा मुंह करके हंस रही है और उसके गोद में बैठा है, और वो उसके गोद में बैठकर चटिकरा से नंदगांव तक पूरी यात्रा की उसने, जो उसके मन में इच्छा थी वो भगवान ने किस तरह से पूरी की। देखो भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन कि ऐसा कुछ हो सकता है, उनको उसकी इच्छा पूरी करने, उसको भी लगता है इम्पॉसिबल है, ये तो अपनी इच्छा ही इच्छा ही रह जाएगी, रखेंगे इच्छा इच्छा के रूप में क्या फर्क पड़ता है, पूर्ण तो होने वाला नहीं है। इतने अद्भुत तरीके से ठाकुर जी ने उसकी इच्छा पूरी की, उसके गोद में बैठ कर नंदगांव तक चले। ऐसे हमारे ठाकुर जी सारी इच्छाओं को जानते हैं और ये भी जानते हैं कौन सी इच्छा पूरी करनी है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी सारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, भगवान है वो, देवता नहीं है। देवता आप जो मांगेंगे उसके लिए जो कीमत चुकाएंगे, तपस्या के रूप में, प्रार्थना के रूप में, व्रत के रूप में जो करेंगे, कितना कीमत चुकाई है उसका आपको लाभ देंगे। अच्छा बुरा आपको आप देखो, ही इज नॉट बॉदर्ड कि आपके लिए अच्छा है कि बुरा है। जैसे चाचा के पास जाएंगे और बोले पापा ने 20 रुपया दिए थे चिक्कू लाने के लिए, और चाचा मुझे सिगरेट दे दो, चाचा दो लाफा लगाएगा कान पे नीचे, और वही 20 रुपये लेके बनिया के पास जाओगे बोलेगे सिगरेट दो 4 स्क्वायर, तुरंत उतने जितने कितने आते हैं उतने 4 स्क्वायर दे देगा आपको। सोचेगा नहीं कि 4 स्क्वायर इसके लिए अच्छा है कि बुरा है, यू विल नॉट थिंक। वैसे देवताओं की पूजा होती है, वो आपको जो कीमत चुकाएंगे वो लाभ देंगे, अच्छा बुरा आपको देखना है। लेकिन ठाकुर जी के पास इच्छा लेके जाएंगे तो ठाकुर जी आपके लिए जो अच्छा है वही करेंगे, बुराई तो नहीं करेंगे, इसलिए कहा गया है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदार दी तीव्र न भक्ति योगे न। आपको दुनिया भर की इच्छाएं हैं, कृष्ण के पास ही जाओ, क्योंकि वो तय करेंगे क्या पूरा करना है क्या नहीं करना है। आपको कुछ भी इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष कामो वा, तो भी उनके पास ही जाओ। जो भी है जाना एक ही पास, एक ही दुकान में जाओ, सब जगह पर जाके दस्तखत मत करो। और ये भक्ति की शुरुआत है, मांगना मांगना मांगना। एक समय आएगा उस दुकान में जा जाके कि देने वाला आपकी सारी इच्छाओं का ही हरण करेगा। ये कितनी बढ़िया बात है, देखो आप देवताओं के पास जाओगे, कुछ इच्छाएं पूर्ण होगी, नई इच्छाएं पैदा होगी, या तो वही इच्छा दोबारा और स्ट्रांगली आ जाएगी। और कृष्ण के पास जाएंगे तो वो इच्छा पूर्ण होगी और वो इच्छा भी नष्ट हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, यू आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड अगेन एंड अगेन विद द सेम काइंड ऑफ हॉन्टिंग डिजायर्स। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना स्वार्थ के दृष्टि से भी हितकारक है। फ्रॉम द मोस्ट सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू गोइंग टू कृष्णा इज बेनिफिशियल। और वो स्वार्थ लेकर उसके पास जाएंगे, वो स्वार्थ भी नष्ट हो जाएगा एक दिन, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपके अंदर कुछ बुरी चीज रखेंगे ही नहीं। एक चिंगारी देखेंगे मेरे पास आ रहा है, से पुतना मेरे पास आ रही है, सारा चीज नेगेटिव भस्म कर दिया उसका पूरा, और वो जो एक चीज थी उसको उठाया और अपने अकाउंट में जमा कर दिया उसको। दैट इज आवर ओनली होप, अदरवाइज हमारे पास क्या होप है, हम लोग के पुतना से कम नहीं है। अगर ऐसा भाव नहीं है कृष्ण का तो हम लोग निरंतर चिरंतन काल तक भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कहीं पहुंचेंगे नहीं, कहीं आप वहीं रहेंगे, खटारा गाड़ी में बैठे रहेंगे, उधर ही बैठे रहेंगे, आगे जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारे भगवान ऐसे है, इसलिए हमें आशा है कि हमारा शुद्धिकरण होगा और वो हमें पहुंचा देंगे अपने धाम में और अपना पार्षद बना देंगे और हमारे साथ खेलेंगे। हरे कृष्णा हरी बोल।